नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। वंदेयं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ओम अज्ञानतमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस अधिक मास में आयोजित भागवत कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भक्तिवेदांत हॉस्पिटल की तरफ से ये केवल भौतिक रोग दूर करने वाला अस्पताल न होकर जैसे कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है भवौषधात् इस भौतिक जगत को भवसागर की संज्ञा दी गई है। भव का अर्थ होता है जो है और बाद में नहीं। डॉक्टर श्री विश्वरूप प्रभु ने ये उपक्रम अपनी तरफ से आयोजित किया और बाकी बहुत सारे हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज और बाकी भक्त जिन्होंने भी इस उपक्रम में, इसके आयोजन में कुछ अपना श्रमदान किया है तो वो अति स्पृहणीय, अति स्तुत्य है। ये अधिक मास मतलब एक एक्स्ट्रा मंथ, अधिक 30 दिन, और नॉर्मल कैलकुलेशन करने पर हर 4 वर्ष में एक बार अप्रोक्सीमेटली ये अधिक मास का पर्व आता है, क्योंकि इसमें कोई डिफिनिट, कोई निश्चित रूप से कौन से त्योहार मनाने चाहिए, कौन से व्रत मनाने चाहिए, इसके अज्ञान के कारण इसको मल मास भी कहते हैं कि ये तो त्याज्य है। इसमें नॉर्मली जो भी गणेश चतुर्थी, हनुमान जयंती, नारद जयंती, शिव पूर्णिमा, जो भी कुछ है उसके लिए एक निश्चित तिथि होती है, लेकिन क्योंकि ये मल मास है तो लोग कहते हैं कि इसमें कोई शुभ काम का कोई फल नहीं मिलता, इसमें कोई शुभ काम बताए हुए नहीं है। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस मास को, इस महीने को अपना नाम प्रदान किया। वो कहानी आती है पुराणों में कि अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी, वो बहुत चिंतित थी कि कोई मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, मेरा नाम भी रखा गया है मल मास करके। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आप में इतनी शक्ति प्रदान करूंगा कि इस महीने में अल्प से अल्प, छोटा से छोटा भी कोई आध्यात्मिक कार्य कोई करेगा, मैं उसका प्रचुर मात्रा में लाभ दूंगा। और उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर मेरे लिए कुछ करता है, जैसे इस माह में अगर आप कुछ नॉर्मल दान पुण्य करो तो भी उसका अधिक फल मिलता है, लेकिन कोई भगवान की भक्ति के लिए कुछ करेगा तो उसका कोई, उसकी कोई गिनती नहीं है कि कितना उसका लाभ मिलेगा। मैं आपको यह नाम देता हूं पुरुषोत्तम मास। तो ये बात काफी बार वेदों में दिखाई देती है कि कोई व्यक्ति समाज के दृष्टिकोण से एकदम निम्न स्तर पे है, कोई उसका महत्व नहीं है, लेकिन भगवान उसको उठाते हैं और कहां ऊपर ऊंचाई पर रख देते हैं। श्री कृष्ण में ऐसी क्या शक्ति है कि वो किसी को भी अपना बना लेते हैं, ये उनका हृदय ऐसे कैसे कार्य करता है, यही बात काफी स्पष्ट रूप से दशम स्कंद में दिखाई देती है। मेरा अनुमान यह है कि पिछले 8 दिनों में सात दिनों में आपने प्रथम स्कंद से एक एक स्कंद का अवलोकन करते हुए पूरा भागवत तो जानने के लिए सात दिन क्या सात जीवन या जीवन के भी लग सकते हैं। तो आपने आज तक एक से नौ स्कंद का एक ओवरव्यू, उनके ऊपर एक दृष्टि शेप लिया है। आज से हम दशम स्कंद का एक उसका विहंगावलोकन, जिसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, तो वो करेंगे। आज जो प्रसंग मुझे दिए गए हैं चर्चा के लिए, उनमें से प्रथम है भगवान कृष्ण का आविर्भाव, फिर पुतना, शकट, तृणावर्त आदि असुरों का वध, श्री कृष्ण द्वारा मृद भक्षण जब उन्होंने माटी खाई, और उसके पश्चात यशोदा माई को उन्होंने दिया गया, उनके द्वारा दिया गया ब्रह्मांड का दर्शन। तो कल ऐसे ही कुछ पांच एक लीला हम चर्चा के लिए लेंगे यहां पर। आज का सत्र हम अभी आरंभ कर रहे हैं। प्रसंग ऐसा है जैसे परीक्षित महाराज शाप मिलने पर सात दिन भागवत कथा सुनने के लिए गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। पुराणों में शाप उशाप कई बार पढ़ने को आता है। परीक्षित महाराज अगर एक राजर्षि हैं, अपने आप एक पुण्यवान राजा हैं, और एक कोई भी छोटा सा बालक उनके अपराध को एकदम बड़ा समझकर सारे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को यह नन्ना सा बालक कहता है कि जिसने मेरे पिताजी का अपमान किया है वो सात दिन में मर जाएगा, संक्षिप्त में कथा ऐसी है कि परीक्षित महाराज मृगया के लिए गए थे, शिकार के लिए गए थे, कुछ मृगया हाथ में नहीं आई, कोई पशु हाथ नहीं लगा, अत्यधिक प्यास लगी, हालांकि वो काफी संयमित व्यक्ति हैं, लेकिन उस समय उन्हें पता नहीं चला कि इतनी प्यास क्यों लग रही है। तो देखा कि दूर कहीं पर कुछ आश्रम जैसे नजर आ रहा था, वहां पे गए, अत्यंत विनीत भाव से कहा बहुत प्यास लगी है, कुछ जल मिलेगा? दो तीन बार बोलने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो एक ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं। अब उस समय 5,000 वर्ष पूर्व राजा को पता है कि जंगल में रहने वाले ऋषि ध्यान करते हैं। ध्यान का कोई समय नहीं होता, कई लोग दिन भर करते हैं, कोई दिन रात करते हैं। क्षत्रिय राजा होने के नाते ऐसे ध्यान का सम्मान करना, ऐसे ऋषि मुनि को रक्षण, उनकी रक्षा करना, यह उसका कर्तव्य है। तो विपरीत होकर राजा को क्रोध आ गया कि ये जानबूझकर आंख बंद करके बैठे हैं, मैं सिर्फ जल मांग रहा हूं, जल देने में क्या कष्ट है? तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको नहीं देना है तो। और जैसे ही वो जा रहे थे, एक मरा हुआ सर्प, वो प्रदेश पूरा जंगल का वन्य प्रदेश है, तो राजा ने अपने एक बाण से वो मरा हुआ सर्प उठाकर और ऋषि के गले में डाल दिया। अब ये परीक्षित महाराज का स्वभाव नहीं है ऐसे कि कहीं भी मजाक करेंगे वो या किसी का विनोद करेंगे, खास करके ऐसे ऋषि का तो सम्मान करना उनको बचपन से सिखाया गया है। और वापस आ गए, कुछ समय बाद ऋषि का ध्यान समाप्त हो गया, उन्होंने देखा कि गले में सर्प है, तो उन्होंने कुछ उसको ज्यादा गंभीरता से लिया नहीं, लेकिन ये बात फैल गई। ऋषि पुत्र, वो गृहस्थ ऋषि थे, उनके पुत्र पास नदी में स्नान कर रहे थे और उनका वयोमान बताया गया है कि 8-10 साल का बालक होगा अधिक से अधिक। बाकी लोगों ने बड़ा हल्ला मचाकर कहा, उसका नाम श्रृंगी था, अरे श्रृंगी, एक राजा ने आके आपके पिताजी का ऐसे अवमान किया। श्रृंगी वैसे ही बीच नदी में बैठा है, खड़ा है, उसने वहां का जल हाथ में उठाकर कहा, जो अभी हमने वर्णन किया, ये जिस किसी राजा ने किया है, क्या समझते हैं ये क्षत्रिय अपने आप को? क्षत्रियों का अभिमान होता है कि हमारे पास शस्त्र है, हमारे पास अस्त्र है। ब्राह्मणों का अभिमान होता है, हमारे पास तप का बल है, हम शाप दे सकते हैं। कलयुग में तो ना ऐसे ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है। प्रभुपाद कहते हैं सब लोग तो रो रहे हैं, नौकरी कहां मिलेगी, नौकरी कहां मिलेगी, तो इसका मतलब है कलौ शूद्र संभवा, प्रैक्टिकली सब शूद्र हैं। जैसे परीक्षित महाराज को ये बात पता चली कि मुझे ऐसे शाप मिला है, तो ये उनकी परीक्षा थी कि अभी ये राजा क्या करेगा। और जब ऋषि को, शमीक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने ऐसे एकदम उतावलेपन में शाप दिया है, तो वो जाके राजा से मिलने के लिए गए कि मेरे पुत्र ने कुछ ऐसे जल्दबाजी में किया है, बालक है, बालक इतना जानता नहीं है। तो उसमें श्रील प्रभुपाद आचार्यों को उद्धृत करके स्पष्ट करते हैं, आसानी से परीक्षित महाराज कह सकते थे कि ये शाप मैं स्वीकार नहीं करता, बस उतना ही काफी था उनके लिए, इतना पुण्य था उनके पास। लेकिन उन्होंने एक काम के लिए ऐसे नहीं किया, उनको पता था कि आने वाला युग जो है वो सबसे अंधकारमय, सबसे निकृष्ट, सबसे डिग्रेडेड, पाप से भरा ऐसा समय रहेगा। तो क्यों ऐसे समय को आप आने दें? आप राजर्षि हैं, आपका काम होना चाहिए कि उसको रोकें। उसके बारे में थोड़ा सा शास्त्र में बताया गया है। बाकी युगों में पाप का संकल्प करने से, अगर पाप का मन में विचार आ गया बाकी युगों में, तो उसका प्रभाव होता है, उसका परिणाम लेना पड़ता है। अगर कोई पुण्य का विचार आ गया, जब तक पुण्य करते नहीं तब तक उसका लाभ नहीं मिलता, ये बाकी युगों की बात है। पाप का विचार आ गया तो आप दोषी समझे जाते हैं, पुण्य का संकल्प करने तक पुण्य का प्रभाव नहीं पड़ता, पुण्य का लाभ नहीं मिलता। कलयुग में पाप करने पर उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि वैसे ही इतना बाकी का माहौल खराब है, तो पापी विचार तो 24 घंटे रहते हैं, और पुण्य का संकल्प करने पर भी पुण्य का लाभ मिलता है। मतलब ऋषि मुनि ने जान लिया है कि इस युग में लोग अच्छा सोचेंगे भी नहीं किसी का, और केवल नाम कीर्तन करने से कलि का प्रभाव नष्ट हो सकता है, कम से कम आपके जीवन में। तो एक बार एक भक्त बता रहे थे कि जब कलि को बताया गया कि महाशय आपका काल जो है वो मानो की दृष्टिकोण से 4,32,000 साल का है। अभी तक कितने गए? 5,000। केवल 5,000 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक 4,27,000 बाकी हैं कलयुग के लिए। तो जब कलि को बताया गया कि केवल नाम कीर्तन करने से आपका परिणाम धुल जाएगा, तो कलि ने सोचा मैं करने दूं तब ना, भले नाम इतना सिंपल है। कभी कभी हम लोगों से कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र जप करो, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 3 शब्द हैं हरे कृष्ण और राम, और पहला आधा चरण उसका है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई कहता है कि इसमें क्या होगा, कोई हवन नहीं है, कोई होम हवन, कोई तप, एक पैर पे खड़े रहो, कोई शीर्षासन करो, कुछ ऐसे करो। सीधा साधा सिंपल फॉर्मूला होने पर भी लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन फॉर्मूला चाहिए। तो ये जो कृष्ण नाम की महिमा है या कृष्ण लीला की महिमा है, इसको श्रवण करने की इच्छा से परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है, मैं शाप को स्वीकार करता हूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, यहां तक के राज वस्त्र सब त्याग करके वो बैठ गए और सुखदेव गोस्वामी को वहां के उपस्थित ऋषि मुनि ने उनको चयन किया कि यही सबसे उपयुक्त सबसे योग्य व्यक्ति हैं जो हरि कथा सुना सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 7 दिन में यह कथा हो गई और दशम स्कंध जो है उसमें 90 अध्याय हैं। ये 90 अध्याय मिलकर लगभग श्लोक की संख्या में आधा भागवत होता है, मतलब बाकी कैंटोज और बाकी स्कंद और दशम स्कंद। दशम स्कंद इतना बड़ा है और कुछ श्लोक संख्या भी अधिक है। तो जैसे ही नौवा स्कंद होता है जिसमें राजवंश का वर्णन आता है, सूर्यवंश सोमवंश, सूर्यवंश में प्रभु रामचंद्र आए, रघु जो राजा है जिससे उनका नाम राघव राघवेंद्र, तो रघु राजा के इक्ष्वाकु वंश में ये सब अलग अलग राजाओं के नाम है। सोम चंद्र का जो वंश है उसमें यादव कुल आ गया और यादव वंश में श्री कृष्ण भगवान ने आविर्भाव किया। तो ये 9वें स्कंद के 24वें अध्याय का 66वां श्लोक है जिसमें 9वें स्कंद में संक्षिप्त में सुखदेव महाराज अलग अलग राजाओं के बारे में बताते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि वसुदेव एक राजा थे, देवकी से उनका विवाह हो गया और वो कृष्ण के पिता थे। अपने जन्म के पश्चात कृष्ण वृंदावन चले गए, वहां पर उन्होंने अनेक असुरों का वध किया, ब्रज गोपियों के साथ अति सुंदर अति मनोहर लीलाएं की, फिर वृंदावन छोड़ के द्वारका आ गए। द्वारका में नारी रत्न, सब नारियों में रत्नों के समान ऐसे 16,000 नारियों का अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हर एक पत्नी से उनको 10 संतान प्राप्त हुई और इस तरह से उनका वंश का विस्तार हो गया। और श्री कृष्ण ने इस प्रकार से गार्हस्थ धर्म, एक गृहस्थ कैसे वैदिक प्रणालियों को अच्छी तरह से पालन करके रह सकता है, इसको प्रस्थापित किया। और ये सुनकर जो परिणाम होना था वही हो गया। परीक्षित महाराज कहते कि एक मिनट, ये ऐसे एक श्लोक में मैं संतुष्ट नहीं हो गया। ये क्या है कि वसुदेव कृष्ण के पिता हैं और वो जन्म के बाद मथुरा से गोकुल गए, वहां पे उन्होंने विवाह किया, फिर वहां से द्वारका गए। सुखदेव महाराज अपना जो विद्यार्थी है, सुखदेव महाराज गुरु हैं, परीक्षित महाराज उनके शिष्य हैं। ये भागवत कथा करते करते सुखदेव अपने शिष्य की परीक्षा भी लेते थे कि ये सुनने के लिए कितना उत्सुक है, इसमें कोई प्रश्न है क्या। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने सेंटर्स में, अपने मंदिरों में, उन्होंने ये सुबह का भागवत प्रवचन जो रखा है, हालांकि उनका सिस्टम था सुबह भागवत, शाम को भगवत गीता, अर्थात राधा गोपीनाथ मंदिर में हम शाम का प्रवचन लोग बाहर ही करते हैं, कॉलेजेस में जाके या नामहर प्रोग्राम में, तो कई सालों से वो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। लेकिन शाम को प्रोग्राम कई मंदिर में मैंने देखा है कि तुलसी आरती के बाद एक गीता प्रवचन। क्यों? क्योंकि हमको भी अपने जीवन में परीक्षित महाराज जैसा होना है। भारत में एक भागवत सप्ताह नाम का एक प्रोग्राम चलता है जिसमें प्रोफेशनल, जिनका पेशा है कि वो भागवत सुनाना, ये उनका पेशा है, और लोग वर्ष में एक बार, दो बार या तीन बार ऐसे 7 दिन 2 घंटे 3 घंटे सुनते हैं, और वो समझते हैं कि हमको परीक्षित महाराज जैसा फल मिलना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे नहीं होगा। भागवत पुण्यमय है, पुण्य प्रदान करने वाला ग्रंथ है, लेकिन परीक्षित महाराज ने जो भूख और प्यास ये छोड़ के ग्रंथ के आरंभ, ये 10वें स्कंध के आरंभ में वो कहते हैं कि महाराज अब जब आप श्री कृष्ण का आविर्भाव मुझे बताने वाले हैं, सबसे पहले मुझे बताइए कि श्री कृष्ण का आविर्भाव कैसे हो गया, फिर बलराम जी का आविर्भाव कैसे हो गया, फिर कंस उनका मामा था, भले अपने मामा का कोई वध करता है, फिर उन्होंने इतनी सहस्र रानियों का स्वीकार क्यों किया, उन्होंने कितने असुरों का वध किया, कैसे उन्होंने धर्म के तत्वों की स्थापना की, और जो लास्ट लाइन बोलते हैं परीक्षित महाराज, आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए और जो प्रश्न मैं आपको पूछ नहीं सकता उसका भी उत्तर दीजिए, क्योंकि मेरी मति नहीं चलती, मुझे पता नहीं कौन से प्रश्न पूछने चाहिए। वो कई बार आप किससे पूछोगे कि आपको भगवान के बारे में कोई प्रश्न है, बोले नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जानकारी नहीं है। तो सबसे प्रथम ये जो ऐसे हमने यहां पर उपक्रम किए हैं, इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि कुछ लोग कम से कम पहली बार, अरे बाप रे, कृष्ण का जन्म ये ऐसा हुआ, ये सिद्धांत ऐसा है, फिर इसके बाद और चिकित्सा और मन में उसका मंथन करने के पश्चात कुछ प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं। वस्तुस्थिति क्या है कि बाहर आप किसको पूछो कि भगवान ने ऐसे क्यों किया, ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं, तो कोई कहते कि हमें पता नहीं। अधिकतर इसमें जिज्ञासा को दबाया जाता है, और इस्कॉन में प्रभुपाद की ये इच्छा थी कि इस जिज्ञासा को अधिक से अधिक उत्तेजित किया जाए। जितना हम कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछेंगे उतनी हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, जो वक्ता है उसकी जीवा शुद्ध हो जाएगी, जो श्रोता है उसके कर्ण शुद्ध हो जाएंगे, और जो प्रश्न पूछता है उसका भी इसमें लाभ है। तो गंगा जैसे अधो, मध्य और ऊपर ऊर्ध्व तीनों लोगों को पावन करती है, वैसे ही वासुदेव कथा प्रश्न पुमान स्त्रिंस पुनाति ही, तीन प्रकार के लोगों को, बोलने वाला, प्रश्न पूछने वाला और सुनने वाले, तीनों को ये पावन करती है। तो हम आरंभ करते हैं दशम स्कंध का ये पहले अध्याय का चौथा श्लोक है। निवृत्त तर्षैर उपगीयमानाद भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुण गौरव करना ये परंपरा से किया जाता है। परंपरा का अर्थ होता है गुरु के बाद शिष्य, शिष्य के बाद उसका शिष्य, शिष्य के बाद उसका शिष्य, इस तरह से। इसको अवरोह ज्ञान कहते हैं, जो ज्ञान ऊपर से नीचे आता है धीरे धीरे। इस प्रकार का गुण गौरव किन किन जैसे लोग पसंद करते हैं, कौन से लोग पसंद करते हैं, जिनको भौतिक संसार में यहां की क्षणभंगुर, यहां की भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं है। निवृत्त तर्शेर, जिनकी तृष्णा, जिनकी प्यास अब निवृत्त हो गई है, उनको अभी और कोई इच्छा नहीं है। फिर परीक्षित महाराज कहते हैं भवौ सदात्, मैंने आरंभ में कहा था कि इस संसार को भवसागर कहते हैं। इस भवसागर के ऊपर सबसे उपयुक्त उपाय, सबसे अच्छी औषधि है श्रोत्र मनो अभिराम, कानों को सुनने के लिए और मन को मन को आनंद देने दान देने वाली कथा, इसे कहते हैं श्रोत्र मनोभिराम। तो उत्तम श्लोक गुणानुवाद, भगवान उत्तम श्लोक के गुणों की कथा, उनकी लीला की कथा। परीक्षित महाराज ये एक निर्णय लेते हैं कि बिना पशुघ्न, पशु की हत्या करने वाला, यहां पर पशु का अर्थ कभी कभी आत्मा के रूप में भी लिया जाता है, कि अपने आप की हत्या करने पर तुला हुआ व्यक्ति ही कृष्ण कथा से दूर रहना चाहेगा, नहीं तो बाकी सब लोग, उनके मन में ये इच्छा रहेगी और सुनते रहे और सुनते रहे और सुनते रहे। तृष्णा के बारे में परीक्षित महाराज क्यों इतना गारंटी से कह रहे हैं कि महाराज आप मेरे भूख प्यास की चिंता मत करना, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले प्यास के कारण उनको शाप मिला था कि अभी प्यासा प्यासा मैं जंगल में भटक रहा था और अचानक मैंने किसी ऋषि को शाप दिया। तो हमको भी ये पता चलता है कि वास्तविक वो बड़े संयमी, बड़े आत्मसंयमी राजा हैं, लेकिन अब इस वक्त, उस समय उनका वो भगवान की योजना के कारण वो आत्मविश्वास ढल गया था। अब पूर्ण रूप से वो आत्मसंयम की स्थिति पर हैं। आप और हम समझते हैं कि कोई राजा होगा तो राजा तो ऐश आराम से जीता है, खाता है, पीता है अच्छी तरह से, एक दिन का उपवास होगा अगर कोई निर्जल एकादशी है तो कितना कष्ट होता है। और यहां पर राजा 7 दिन तक सुनने का संकल्प किए बैठा है, तो वो कहता है कि आप मेरे भूख की और मेरे प्यास की चिंता मत करना, मैं केवल अभी आपसे सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव महाराज अपने विद्यार्थी का ये मनोभाव कि भूख प्यास छोड़ने के लिए तैयार है और एकाग्र चित्त से सुनने के लिए तैयार है, राजा होके भी मरने के लिए तैयार है, और उनका प्रश्न एक ही है मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किस विषय के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो मरणासन्न कौन नहीं यहां पर? जैसे कोई कहता है कि दुनिया के सारे लोग 7 दिन में मरने वाले, तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं। तो 7 मतलब रविवार से सोमवार तक, उसी में तो कभी ना कभी मृत्यु आने वाली है ना। कोई 8वां दिन नहीं होगा हमारे लिए मृत्यु का। तो इसीलिए ये भागवत आप और मेरे लिए भी अत्यंत उपयुक्त है। पहले स्कंद से 9वें स्कंद तक अनेक अनेक महाजनों ने, भीष्मदेव, प्रचेत, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, यमराज, फिर अलग अलग राजर्षि, भगवान शिव, इन सभी ने कृष्ण का गुणगौरव किया है। जैसे भगवद गीता कृष्ण कथा है क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण की स्वयं ने कही हुई कहा हुआ उपदेश है वो। क्यों कृष्ण महान है ये हम भागवत में बाकी महान व्यक्तियों से सुनते हैं 1 से 9 स्कंद तक। तो प्रभुपाद की एक गारंटी है कि उन्होंने जो भक्ति वेदांत तात्पर्य दिए हुए हैं वो कहते हैं कि 1 से 9 स्कंद तक जो व्यक्ति प्रतिदिन, आप अगर 1 घंटा आधा घंटा भी पढ़ोगे तो कुछ 1-2.5 साल में आपके 9 स्कंद पढ़ के हो जाएंगे। कई लोग तो उसके पहले भी कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं मैं गारंटी देता हूं कि आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा और कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। ये केवल 1 से 9 स्कंदों में इतनी क्षमता है। और जो 10वां स्कंद है वो आपको भगवान का भक्त बना देगा। आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार, ये दोनों पैरेलल चलते हैं कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे स्वामी है, ये हो गया आत्म या भगवत साक्षात्कार। लेकिन भगवान की भक्ति, भक्ति जो जैसे आज हम देखते हैं इतनी सस्ती चीज नहीं है या इतनी आसान चीज भी नहीं है, दुर्लभ है वो। उसका वर्णन दुर्लभ करके किया गया है। ऐसी दुर्लभ वस्तु भगवान कभी कभी अति सुलभता से प्रदान करने के लिए आविर्भाव लेते हैं। और ये प्रसंग उसी समय का है। एकदा सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के आविर्भाव की कथा आरंभ कर रहे हैं। एकदा एक समय की बात है, पृथ्वी के ऊपर अनेक राजा महाराजाओं का भार हो गया था। भार क्यों? पृथ्वी तो अनेक पर्वत लेके घूमती है, अनेक नदियां, अनेक समुद्र हैं, तो एक राजा का भार क्या है? तो सुखदेव महाराज कहते हैं ये राजाओं की सेनाओं का भार था। सेना भी क्या है, कुछ लाख या कुछ करोड़ लोग हैं। उसके भी अंदर की बात यह है, ये सभी राजा समझते हैं ये पृथ्वी मेरी है, ये पृथ्वी मेरी है। और जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा झूठ बोलता है कि ये भूमि मेरी है, जब आपके यहां पर ज्यादा दिन रहने की गारंटी नहीं है, तो ये झूठ का भार हो जाता है वो। वास्तविक 9वें स्कंद में वो पृथ्वी कहती है कि मैं सब प्रकार के दुराचारी लोगों को, मैं उनका भार सहन कर सकती हूं, लेकिन झूठ बोलने वाले का नहीं। मिथ्याभाषी, झूठ बोलने वाले व्यक्ति का भार मैं सहन नहीं कर सकती। तो ये जो इस प्रकार के असंस्कृत, दुराचारी, भ्रष्ट राजा, इनका भार असह्य होने के कारण पृथ्वी ने एक गाय का रूप लिया और ब्रह्मा जी के पास गई। सिस्टम ऐसा है कि जब भी संसार में, ब्रह्मांड में कुछ समस्या आती है, ग्रह के, हर एक ग्रह के इंचार्ज को, सुपरिंटेंडेंट को ब्रह्मा के पास जाने का अवसर मिलता है। जैसे कोई ये बड़ा हॉस्पिटल है, किसी डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जाके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं कि यहां पर ये वस्तु काम नहीं करी है या ये वस्तु यहां पे चाहिए। तो पृथ्वी ने गाय का रूप लेके उनके पास गई, नेत्र अश्रु से भरे हैं और कह रहे कि देव अभी ये और सहन नहीं हो रहा है, ये लोग स्वयं अपने लिए नरक का मार्ग विस्तृत कर रहे हैं और अपनी प्रजा को भी पीड़ित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, उन्हें लगा कि यह सही बात है। उन्होंने कहा देवी आप निश्चिंत रहो। ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा शिव ये प्रमुख देवों में इनकी गणना की जाती है और सृष्टि के पालन पोषण के लिए विष्णु भी इनके साथ, जैसे हम त्रिमूर्ति कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, हालांकि विष्णु देव कैटेगरी में नहीं आते, वो कोई देवता नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन इस कार्य के लिए ब्रह्मा निर्माण करते हैं, विष्णु पालन पोषण करते हैं, शिव जी इसका संहार करते हैं। ब्रह्मा जी ने सारे देवों को संदेश दिया कि कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए हम सबको चलना है। हर एक विश्व में एक श्वेत द्वीप होता है, एक ऐसा स्थान है जो विष्णु का स्थान है, जो नश्वर नहीं है, वहां पे जाके ब्रह्मा जी और सारे देव तप करने लगे, ध्यानस्थ बैठे रहे। पुरुष सुक्त नामक उन्होंने एक स्तुति गायन चालू किया। अब एक बात प्रभुपाद उसमें बताते हैं कि ब्रह्मा तक देव भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, भगवान को देखना इतने आसान बात नहीं है। यहां पे कोई व्यक्ति कहते हैं कि आप हमको भगवान दिखा सकते हैं क्या, क्या आपने भगवान देखा है क्या, तो शास्त्र यही कहते हैं आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, सारे लाइट चले जाएंगे आप अपने हाथ की उंगली नहीं देख सकते, या नॉर्मली सूर्य प्रकाश में भी आप दीवार के पीछे क्या है नहीं देख सकते। तो भगवान तो है लेकिन आंखें किधर है देखने के लिए, और भगवान इतने चीप इतने सस्ते कैसे हैं कि खाली चिल्ला के ये जो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, ये कोई हिंदी फिल्म नहीं थी कि 7 मिनट का गाना है और भगवान दर्शन दो और एंड में अचानक 2 लाइट के ऐसे बीम जाते हैं और हम तो इसी ऊपर पले हैं कि भगवान तो ऐसे ही आते हैं कि जैसे गाने वाला चिल्लाने लगे तार सप्तक में तो भगवान को आना पड़ता है। ये थोड़ा सा इसको डिग्रेड करने वाली बात है। ये भगवान है, भगवान दर्शन देते हैं, भगवान को अपने विश्व के बारे में अति चिंता है, हम तो केवल चिंता कर सकते हैं लेकिन भगवान कुछ कर भी सकते हैं। तो भगवान ने अदृश्य रूप से ब्रह्मा जी के हृदय में एक संदेश प्रकाशित किया। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ होकर सुनते रहे और जैसे ही संदेश समाप्त हो गया ब्रह्मा जी ने बताया, सुनो देवगण हो, आप सभी को सुर स्त्रिया, उनके लिए भी बात थी इसमें, देव और सुर स्त्रिया मतलब देव नारियां, आप सबको यदुवंश में जाना है। सब व्यवस्था की गई है, आप चिंता मत करना, आपको खाली वहां जाकर जन्म लेना है और भगवान के लिए अनुकूल कार्य करना होगा। तो सारे देवता प्रसन्न हो गए, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर भी बीच में एक आया था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे आईएएस ऑफिसर से बताया कि ये काम होना चाहिए, तो अगर प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं कि सब ऑफिसर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आ जाओ तो उनको आना पड़ता है, सबको अपना अपना काम दिया गया तो काम करना पड़ता है। ये वही एक छोटा माइक्रो रूप है जो विश्व भर में चलता है। वो तो देवों ने ये काम हर्ष सहर्ष स्वीकार किया और सारे देव यदुवंश में जन्म लेने के लिए अपने अपना कार्य करने लगे। संदेश में यह भी बताया गया कि भगवान का अंश, स्व अंश, हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन शास्त्र में हमको विभिन्न अंश कहा गया है। दो प्रकार के भगवान के अंश होते हैं, स्व अंश, विभिन्न अंश। स्वांश, स्व अंश, स्वांश का मतलब है भगवान के लीला अवतार, जैसे वामन, नरसिंह, विष्णु तत्व, विष्णु तत्व के विस्तारित प्रकाश रूप, ये सब भगवान के स्वांश हैं। और जीव, आप और हम, 84 लाख योनियों में भटकने वाले, मुक्त हो या बद्ध हो, हम सब उनके विभिन्न अंश हैं। तो बलदेव नामक अनंत शेष का ये अनंत शेष रूप नाम का स्वांश, वो भी भगवान के साथ अवतरित होंगे। फिर भगवान ने कहा कि मेरी शक्ति विष्णु माया ये भी अवतरण करेगी। एक प्रमुख बात यह है जो भागवत में बार बार बताई जाती है कि सूर्य और सूर्य की शक्ति, एक राजा और राजा की संपत्ति, राजा की सेना, राजा का राज्य, ये जैसे अलग नहीं कर सकते। सिंपल उदाहरण है, अगर पता चलेगा कि अभी कुछ महीने पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा इंडिया आए थे, तो हर एक न्यूज़पेपर में आप यही न्यूज़ पढ़ेंगे, अमेरिकन राष्ट्रपति की भारत यात्रा। क्या वो अकेला आया था? राष्ट्रपति का मतलब है उनके साथ इस समय 650 लोग आए थे, उसमें से 200-250 तो केवल उनकी सिक्योरिटी टीम थी। तो हम सोचते हैं कि खाली राष्ट्रपति आया था, लेकिन वो अकेला नहीं आता, वो उसके सिक्योरिटी, उसके फाइनेंस के सेक्रेटरी, उसके ट्रेड कॉमर्स सेक्रेटरी, ये सब उसकी शक्तियां समझी जाती है। तो उसी प्रकार से भगवान का आविर्भाव, मतलब ये नहीं कि भगवान खाली हाथ हिलाते आते, भगवान की अनंत शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो विष्णु माया ये भगवान की शक्ति, इनका भी आविर्भाव होगा। शूर नामक एक व्यक्ति थे राजा, और शूरसेन ये एक व्यक्ति का भी नाम है और उधर के प्रदेश का भी नाम था। वसुदेव उस राजकुल में, क्षत्रिय कुल में, वहां पर उन्होंने जन्म लिया, और देवक नामक एक राजा, उनकी कन्या देवकी, उनके साथ उनका विवाह तय हो गया। तो भारत में विवाह मतलब बड़ा पर्व होता है, धूमधाम से मनाया गया, बड़ी खुशी की बात थी। देवकी का भाई जिसका नाम था कंस, उसने सोचा कि मेरी प्यारी बहन अभी अपने घर जा रही है, ससुराल जा रही है, तो उसको विरह थोड़ा कम हो जाए, इसलिए मैं स्वयं उसका रथ चलाता हूं। कभी कभी भाई करते हैं ऐसे, हालांकि सारथी ये तो थोड़ा लो काम हो गया, कई नौकर चाकर है करने के लिए, लेकिन यहां पर अपनी बहन के प्रति प्रेम दिखाने के लिए ये भाई स्वयं हाथ में लगाम लिए रथ चला रहे हैं। और शुकदेव गोस्वामी इतनी बारीकी से वैदिक संस्कृति और इसके बारे में बताते हैं, ऐश्वर्य भी हमको पता चलता है कि उस समय लोग कैसे रहते थे। इस विवाह में 400 सुशोभित अलंकृत सोने के हार डाले गए हाथी थे, 10,000 घोड़े, 1,200 रथ और 200 कुमारिकाएं, 200 युवतियां जो देवकी का वहां पर उनकी शुश्रूषा करेगी, उनकी सेवा करेगी, उनकी परिचर्या के लिए। इतना सारा दहेज के रूप में दिया गया। अभी आप कहेंगे अरे दहेज तो बहुत बड़ी बुरी बात है, मैं नॉर्थ इंडिया जाता हूँ तो वहाँ पर कई जगह पे दीवार पर लिखा होता है जो दहेज लेगा जो मांगेगा वो नरक में जाएगा। तो आज आप और हमारे काल में ये दहेज एक मार्केट बन गया है। कोई कहेगा इतना नहीं मिलेगा तो लड़की नहीं देंगे, कोई कहेगा इतना लेना पड़ेगा इतना ही देंगे हम, फिर वो लड़कियों को जलाते हैं वगैरह। तो ये सब शूद्रों का काम है। वैदिक संस्कृति में कन्या का पिता की संपत्ति के ऊपर जैसे पुत्र का अधिकार होता है वो न होने के कारण, क्योंकि उसे पता है उसको तो दूसरे के घर जाना है, तो पिता स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का एक भाग उसको उसके विवाह के समय देता था। आज भी कई जगह पर उसको स्त्री संपत्ति कहते हैं, उसको कोई उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन इतना आप ध्यान रखना कि जो भी पहले वैदिक संस्कृति में बहुत उच्च कोटि का व्यवहार था, अगर भक्ति का वहां पर अंश नहीं है तो कली महाराज ने अपना काम कर दिया है। उसमें हरेक अच्छी चीज को वो घटिया कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। तो ये कन्या को विवाह के समय इतनी सारी भेंट वस्तु देना बुरी बात नहीं है। अर्थात हरेक व्यक्ति कोई घोड़े हाथी और ये सब नहीं देता था, ये राजा है उनके पास साधन संपत्ति है तो फिर उसमें कृपणता क्यों करें। तो देवकी बड़ी प्रसन्न, वसुदेव भी प्रसन्न, विवाह के समय तो प्रसन्न होते ही हैं दोनों, पिता भी प्रसन्न और भाई भी प्रसन्न, और अलग अलग प्रकार के वाद्य बज रहे हैं, बड़ा ऑर्केस्ट्रा होता है। वैदिक संस्कृति में कुछ भी चीज हो तो नाच गाना तो आना ही चाहिए, उधर हर चीज वाद्य वृंद से। और वापस एक बार कलयुग में वो सबका भ्रष्ट रूप दिखाई देता है हमको कि जहां पर भगवान के भजन या भगवान की वेद स्तुति गाना चाहिए वहां पर हम बॉलीवुड की फिल्म संगीत लाते हैं। प्रिंसिपल वही है लेकिन उसका एप्लीकेशन आज भ्रष्ट हो गया है। एप्लीकेशन भ्रष्ट होने के कारण विचार भी भ्रष्ट हो जाते हैं। खैर, तो ये जैसे प्रोसेशन चल रहा है, ये शोभा यात्रा जा रही है, भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कौन बोला मुझे पता नहीं, अशरीर वाक, अशरीर जिसका शरीर नहीं है कोई, जैसे आकाशवाणी, आकाश से हुई वाणी, कंस रे मूर्ख, तू जिस महिला को अपने रथ में लेके जा रहा है उसकी आठवीं संतान तेरा मृत्यु का कारण बनेगी। और सब लोग देख रहे हैं, अचानक इतना अच्छा वाद्य वृंद चल रहा है और ये क्या आकाशवाणी हो गई, और ऊपर से कंस को तो ऐसे अरे मूर्ख, तो तिलमिला उठा। पहले से ही वो कोई खास सदग्रहस्थ ऐसा नहीं था, ये उसने अपनी बहन की शादी के लिए एक बड़ा सबके सामने नाटक रचा था। जैसे ही पता चला कि ये मेरी बहन और इसका इसकी आठवीं संतान, अब वहां पर संतान बताया गया है, आठवां पुत्र या आठवीं कन्या ऐसे कोई बात नहीं की, आठवीं संतान आपके तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। तुरंत खड्ग बाहर आ गया, तलवार बाहर आ गई, देवकी के केश उसने एक हाथ से पकड़ लिए और वसुदेव कह रहे हैं कि अरे अरे क्या कर रहे हैं आप। तो उसने कहा क्या मतलब, मेरी मृत्यु अगर इसके बच्चे से होगी तो इसकी गर्दन अभी मैं काट देता हूं, अगर यही नहीं रही तो बच्चे कहां से होंगे। बड़ा इमरजेंसी का प्रसंग, एकदम क्या किया जाए। अब वसुदेव ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, वसुदेव की समाज में प्रतिष्ठा बड़ी ऊंची थी। तो वसुदेव ने कहा अपने मन में, उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, अब देवकी जैसी साध्वी स्त्री को ये खल ये दुराचारी व्यक्ति मारने पे तुला है। तो हम भागवत में पढ़ते हैं कि सुखदेव गोस्वामी थोड़े से गर्म हो गए एकदम, कि वो कहते हैं ये खल ये पाप ये भोजा नाम पाप कुल पाम सना, एक ही श्लोक में एक ही लाइन में तीन गाली देते हैं उसको। खल मतलब दुराचारी व्यक्ति, विलन, खल। और पाप संस्कृत में कोई मुझे समझा रहे थे, किसी को पापी कहते हैं मतलब यू आर सिंफुल, और किसी को पाप, अरे पाप मतलब तुम मूर्तिमंत पाप हो। ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड गाली है ये। और भोजा नाम, ये भोज वंश के थे, वृष्णि, अंधक, भोज, यादव, ये बहुत क्लोजली निट, आपस में बहुत प्रेम से रहने वाले वंश थे ये सब, सोमवंशीय। भोजा नाम कुल पामसना, कुलांगार सुना होगा आपने कभी, तो कुलांगार का मतलब होता है जो चीज अभी है उसको जला दो तो उसका कोयला जो बचता है वो उसका अंगार हो गया। मतलब आपके वंश का आप एक जला हुआ कोयला हो। ये उस समय तो बहुत बड़ी गाली है, आज भी होगी शायद, लेकिन आज लोगों को अपने कुल के बारे में इतना कुछ अभिमान नहीं है, तो आज इतने ऊपर जाते नहीं लोग परदास वालों की तरफ, बस थोड़ा नीचे ही आके गालियां शुरू करते हैं। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो वैदिक संस्कृत में लेकिन कुल का बड़ा अभिमान कि कुल के बारे में कोई कुछ नहीं कहो, कुल का नाम मुझे रोशन करना है, और ये एक अच्छी बात है। अभी वसुदेव क्या कहते हैं, कंस, हे भोज यशस कर रहा, अभी वो खुशामत कर रहे हैं उनकी, सब पता चल रहा है, भोज वंश का यश प्रकाशित करने वाले। अभी कोई कितना भी खल हो, अगर कोई सुती कर रहा है तो कम से कम कोई सुनेगा, बोलो क्या बोलना है। उन्होंने कहा आप मृत्यु की बात सुनकर इतना डर गए, अरे मृत्यु किसकी नहीं होती, मृत्यु सभी की होती है। व्यक्ति अगर अपना पैर ठोस भूमि पर रखेगा तो उसके बाद ही वो, जैसे बायां पैर अगर आपने रखा और वो ठोस भूमि पर है तो उसके सपोर्ट से आप उठाकर दायां पैर रखते हो। एक कीड़ा एक पत्ते के ऊपर उसको पकड़कर फिर दूसरा पत्ता पकड़ता है, फिर पिछले वाले को छोड़ देता है। बोले इस प्रकार से भौतिक शरीर बदलते रहते हैं, जो चीज होने वाली है ही उसके बारे में आप इतना क्रुद्ध क्यों हो गए हो। एक अति सुंदर उपमा, ये आप सोच सकते हैं, ये रास्ते में हो रहा है सब, ये कोई महल में बैठकर बात नहीं हो रही है। वो कहते हैं कि सूर्य, चंद्र, तारे या कोई प्रकाश भी, अभी आप देख सकते हैं रास्ते में आप जाओगे, अभी बरसात इतनी हो रही है तो नीचे पानी में भी आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगर पानी, अगर रास्ते में पेट्रोल गिरा है या कहीं पे डामर गिरा है या पानी गिरा है, क्योंकि ये तीन वस्तुओं की तरलता अलग अलग है। अब समझने की कोशिश कीजिए, मधु हनी वो तरल कम है, पानी उससे ज्यादा तरल है, पेट्रोल उससे भी ज्यादा तरल है, और अगर ये लिक्विड, ये द्रवित पदार्थ अगर हिलते रहेंगे तो पानी हिल रहा है लेकिन हम कहेंगे कि सूरज भी हिल रहा है या चंद्र भी हिल रहा है, ये प्रतिबिंब हिल रहा है उसमें। तो शरीर जो हमारा है उसमें मन के कारण, मन हमारा हिलता है, और मन के कारण हम कभी क्रुद्ध, कभी प्रसन्न, कभी अच्छे, कभी बुरे, अलग अलग प्रकार के व्यवहार करते हैं। तो एक काम आप समझ लो, मृत्यु तो सर्वनिश्चित है ही, आप इस समय अपनी बहन, एक स्त्री की हत्या करके ये क्यों पाप ले रहे हैं। ये लंबा चौड़ा उपदेश कंस ने सुना, जैसे कोई व्यक्ति कुछ समझ रहा है कि नहीं उसकी चर्या से पता चलता है। तो कंस को देख के वसुदेव को समझ में आ गया कि ये इसको सब समझ रहा है लेकिन समझने की इच्छा नहीं कर रहा है ये। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको डर किससे है, इसकी संतान से ना, ये तो आपकी शत्रु नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं इसकी जितनी भी संतानें होगी मैं आपको सुपुर्द कर दूंगा। अब सोच लीजिए, कंस जैसा व्यक्ति भी सार्वजनिक स्थान पर पब्लिकली जो भी वसुदेव ने कहा है उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। कंस का हृदय भी वसुदेव की ये बात सुनकर प्रभावित हो गया। सुखदेव गोस्वामी इसमें वसुदेव की महानता बताते हैं कि कैसे वैसे करके उन्होंने कंस को शांत कर लिया। लेकिन जैसे कि हिंदी में कहते हैं, आज की मृत्यु कल, कल तो इनको सामना करना पड़ेगा ही सत्य का। के जैसे ही कोई बच्चा पैदा हो गया उसको कंस के पास लेके जाना पड़ेगा। उन्होंने सोचा ठीक है, जो आगे देखा जाए, कम से कम आज तो देवकी का प्राण बचाना मेरा कर्तव्य है। तो कुछ समय बाद देवकी गर्भवती हुई और पहला पुत्र हो गया। उसका नाम रखा कीर्तिमान, दिखने में अति सुंदर, उज्जवल। और उसको लेके वसुदेव वास्तविक उसको लेके कंस के पास आ गए कि ये आपने मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मेरा जो भी संतान होगी लाके दूंगा। कंस ने देखा, फिर सोचा वास्तविक मुझे भय तो आठवीं संतान से है, ये तो पहली है। बोले लेके जाओ। अब वसुदेव वापस आ गए सोचकर कि अरे इसका हृदय तो बदला तो नहीं है, क्या हो क्या गया है। इधर देवता जो पहले उनको आदेश मिला था वो सब ये विष्णु और यादव कुल में जन्म लेने लगे। सब जगह पर अंदर से ही एक बड़ा शुभ लक्षण लग रहा है, सबको आनंदित लग रहा है। और कंस को लग रहा है कि कुछ तो मैंने गलत किया, मैं वास्तविक इतना अच्छा नहीं हूं कभी, लेकिन मालूम नहीं क्या मेरे मन पे सवार हो गया कि मैंने इस बच्चे को जाने दिया। लेकिन जब उसको ये बात पता लग गया कि ये सब शायद देव लोग यहां पर जन्म ले रहे हैं, और एक दिन नारद मुनि आ गए। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं अचानक आ गए, ऐसा उन्होंने प्लान नहीं किया था। नारद मुनि का अपना एक चरित्र ऐसा है कि वो देवताओं के प्रासाद में महल में भी जा सकते हैं, असुरों के पास भी जा सकते हैं। कंस ने उनका स्वागत किया, देवर्षि आइए। उन्होंने पूछा सब क्षेम कुशल है? बोला हाँ एक तरह से तो है एक तरह से नहीं है। नारद मुनि ने बताया कि मैंने सुना है कि देवताओं यहां पर आविर्भाव ले रहे, ये बात तो सही है। और एक बात सुनो कंस, ये जो आठवां पुत्र है ना, ये ऐसे आवश्यक नहीं है कि ये आठवां मतलब पहला वाला पहला है और उसके बाद गिनती कर सकते हैं। उन्होंने कम से कम ये विचार डाल दिया, कोई भी पुत्र आठवां हो सकता है। और बस जैसे ये विचार कंस के मन में भरने लगा, उसने फिर से वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया। और कुछ ही दिन हुए थे, वो पहला बालक अभी भी छोटा ही था, उसको पकड़कर एक शिला पर उसको मारकर खत्म कर दिया। एक के बाद और ऐसे 6 पुत्र हो गए और सबको, टोटल 6 हो गए, उन सबको कंस ने शिला पर मारकर उनके प्राण ले लिए। देवकी बिचारी प्रति 1.5-2 साल में जब से उसकी संतान होती थी उसको उसकी मृत्यु देखनी पड़ती थी। उसे पता नहीं कि मैंने क्या किया है, किस पाप का ये फल मिल रहा है, ये क्या भगवान की व्यवस्था है। लेकिन उन्होंने अपना अपना जो व्रत है, अपना जो अनुष्ठान है, वो छोड़ा नहीं। अब सातवीं बार देवकी को गर्भ रह गया। कई बार ऐसे होता है, हमें पता नहीं कि भगवान की व्यवस्था क्या है, लेकिन एक व्यवस्था है। तो जब कुछ चीज समझ में आए भक्ति में तो ठीक है, अगर समझ में ना आए तो कोई भी व्यक्ति अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसलिए भक्ति को छोड़ देगा तो वो अपना ही बड़ा नुकसान कर बैठता है। आप और हम कोई वसुदेव देव की है नहीं, तो हमारे जीवन में ऐसी समस्या आएंगी नहीं, क्योंकि ये ऐसे उच्च भक्तों के जीवन में ही आता है प्रसंग। वो भी कितना उज्जवल उदाहरण दिखाते हैं हमारे सामने। सातवीं बार जब गर्भ रह गया तब भगवान ने आदेश दिया विष्णु माया को, इस गर्भ को देवकी के गर्भ से स्थलांतरित करके गोकुल में रोहिणी नामक वसुदेव की और एक पत्नी रह रही है, उसके गर्भ में रखो। तो वहां पर रोहिणी गर्भवती हो गई और वहां पर संकर्षण, बलराम, बलदेव, अनंत शेष इत्यादि नामों से जो भगवान के स्वांश अत्यंत प्रसिद्ध हैं, उनका आविर्भाव हो गया। और यहां पर लोगों को लगा कि अरे ये तो गर्भपात हो गया, ये तो पता नहीं चला ये क्या हो गया करके। कम सोच रहा था कि प्रसूति हो या गर्भपात हो, सात तो हो गए, अब जो बारी है आठवीं संतान की। इस आठवें संतान के बारे में चर्चा करते करते एक दृष्टिकोण से कंस पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो गया। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, तो मेरे जीवन का उद्देश्य है टू बिकम फुली कृष्ण कॉन्शियस, पूर्ण रूप से कृष्ण के बारे में चिंतन करना, ये मेरे जीवन का उद्दिष्ट है। वो कंस को कैसे मिला? मिला लेकिन नेगेटिव रूप से मिला कि ये कृष्ण है, ये विष्णु है, ये मेरा शत्रु है, उसे मुझे मारना है। तो कृष्ण भावना भावित होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कृष्ण के शत्रु भी होते हैं। रूप गोस्वामी समझाते हैं, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम्, श्री कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव रखकर उस भाव का अनुशीलन करना भक्तिर उत्तमा, यह उत्तम भक्ति है। तो जैसे संस्कृत में कहते हैं जल स्थल पाषाण सब जगह पे, पानी में, पत्थर में, हवा में, आकाश में, नभ में, घर में, फर्नीचर में, सब जगह पर कंस को केवल विष्णु 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 दिखाई देगा। वो कुछ पीने लगता था तो उसमें वहां पे विष्णु की मूर्ति, तो बोलो नहीं नहीं ये नहीं पीऊंगा मैं। और उसने देखा एक दिन वसुदेव अचानक एकदम प्रकाशमान दिखने लगे, इतने प्रकाशमान जैसे उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। सुखदेव गोस्वामी परिचित महाराज को वर्णन कर रहे हैं, राजा चार प्रकार से अन्यत्र सुखदेव गोस्वामी ने बताया था, चार प्रकार से जीव जन्म लेते हैं, उद्बीज, अंडज, स्वेदज, जरायुज। इस जगत में सीड्स बीज, बीज से जीव जन्मते हैं, पौधे वृक्ष। स्वेदज, कुछ कीटाणु ऐसे हैं जिनको पसीने जैसे गंदे पदार्थ में उनके शरीर जन्म लेते हैं, कुछ प्रकार के कीटक प्रोपर समझाते हैं जो इस गंदे तमोगुणी वातावरण को पसंद करते हैं। जरायुज, आप और हम मनुष्य हैं तो स्त्री पुरुष के संयोग से, स्त्री के उदर में मनुष्य होगा तो नव मास, 9 महीने तक वो गर्भ का विकास होता है, और जिस समय गर्भ मां के उदर में रहने लायक नहीं होता तो उसको बाहर आना पड़ता है, इसे हम प्रसूति कहते हैं। और अंडज पक्षी हैं जो अंडा देते हैं, मुर्गियां ये अंडे से पैदा होते हैं। तो यही 4 प्रकार के भौतिक शरीर प्राप्त करने के तरीके हैं। श्री कृष्ण इनमें से किसी भी तरीके से जन्म नहीं लेते। श्री कृष्ण प्रथम वसुदेव के मन में आ गए। कैसे आ गए? ऐश्वर्य पूर्ण, अपना सारा ऐश्वर्य लेकर। ऐसा नहीं कि भगवान यहां आने के बाद कुछ सोचते हैं क्या कमाऊं क्या खाऊं कहां मिलेगा कुछ। वो अपने वैकुंठ लोग, वो आदमी पहले से ही संपत्ति में पूर्ण है, उसे यहां आके क्या कमाना है। उल्टा इस भौतिक जगत की प्रकृति को कहते हैं भिन्ना। भगवान इस भौतिक जगत की संपत्ति को कहते हैं अरे ये तो भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये मैंने छोड़ दिया है। ऐसे जैसे कोई अमीर व्यक्ति है और उसका सामने, उसके घर के सामने उसका कूड़ादान है, गार्बेज डिपो उसका। कोई कहता है कि मुझे यहां पे पेन मिला, कोई कहते हैं मुझे यहां पे ग्लास मिला, कोई कहते हैं मुझे यहां पे 10 रुपए मिले। मिलेंगे ही ना, इतना अमीर आदमी हो ये सब फेंक सकता है। उसमें किसी को 1000 रुपए मिलेंगे तो पता चलेगा कूड़े में अगर 1000 रुपए जाते हैं तो अंदर घर में कितना होगा, है कि नहीं। तो इस जगत की भौतिक प्रकृति को देख के लोग कहते हैं कि अरे बाप रे ये विश्व इतना सुंदर है, ये इतना भोगने के लिए उच्च। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं तो इसको छोटा तक नहीं, जाओ जो भी भीख मांगे हैं जाओ ले लो अपने लिए कुछ समय तक, पेट्रोल सोना चांदी जो है पकड़ के रखो, जितना भौतिक प्रकृति ने आपको शरीर दिया है तब तक मेरा मेरा कहते रहो, एक दिन मृत्यु सब कुछ छीन लिया जाएगा मृत्यु के समय। तो वसुदेव के मन में प्रथम कृष्ण का आविर्भाव हो गया। ध्यान से सुनिए, इसलिए प्रभुपाद ने इसको द साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस कहा गया है। ये विज्ञान है, एक विज्ञान में कैसा है, ये एक्सपेरिमेंट करो इसमें ये केमिकल डालो तो ये प्रोडक्ट मिलना ही चाहिए। उसी प्रकार से भक्ति के नियमों का पालन करो, अपना जीवन वैसे यापन करो, भक्ति मिलनी ही चाहिए। वसुदेव के मन से फिर श्री कृष्ण देवकी के मन में गए। पहले वसुदेव एकदम प्रकाशमान दिख रहे थे, अब देवकी प्रकाशमान दिखने लगी। वो सारा उसका कारागृह था एकदम उज्जवल हो गया। सब कारागृह के सिक्योरिटी गार्ड्स और वहां के जो भी लोग और सब लोग चर्चा कर रहे हैं क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। कंस ने उसी समय समझ लिया कि ये विष्णु है और ये अभी देवकी के शरीर में इसने प्रवेश किया है तो मैं इसको मार देता हूं। फिर उसके मन में विचार आ गया अरे लोग कहेंगे ये स्त्री हत्यारा है, क्षत्रिय के लिए एक अबला स्त्री की हत्या करना कोई भूषण नहीं है। तो वो सोच ही रहा था कि आज मारूं, फिर मन में विचार आ गया कि नहीं पहले इसके संतान का जन्म होने दो फिर उसको दोनों को मारता हूं। फिर मैं इसके उसके मन में सदैव ये मारने 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 की भावना चलती थी हमेशा। और जैसे दिन जाते रहे देवकी, जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे किसी के पास विद्या है लेकिन वो विद्या का उपयोग नहीं कर रहा है, जैसे कोई अग्नि है राख से ढका हुआ है, वैसे देवकी लग रही थी। प्रभुपाद कहते हैं कि भारत की आज की अवस्था ऐसी है देवकी जैसी, विद्या है लेकिन विद्या का प्रसार प्रचार नहीं किया जा रहा। भगवद गीता और भागवत ये भारत की विशेष संपत्ति है, फॉरेनर्स ने आके हमारा कोहिनूर ले लिया, हमारा सोना लिया चांदी लिया, हम रो रहे हैं। और प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं ये जो हमारा खजाना है ये संपत्ति इसको ले लो। हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि इस संपत्ति को बांटो। तो हमारा ये कृष्ण भावनामृत संघ ये छोटा सा अल्प सा प्रयत्न है कि ये जो ज्ञान है उसको सब जगह पे फैलाए, लेकिन दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद को तो आना चाहिए ना। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। इसलिए ये जो भागवत यहां पर 10 दिन की कथा रखी गई है, इसका भी उद्देश्य यही है कि हर एक व्यक्ति को इंडिया में रह के कृष्ण का विज्ञान समझना सबसे आसान, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे कल्चर में है पहले से। आलस्य, अगर हमने आलस्य को त्याग दिया काफी आसान हो जाए। तो देवकी का गर्भ, अभी ये जैसे कई चित्रों में दिखाया जाता है कि देवकी एक गर्भवती महिला जैसे दिखती है, लेकिन अभी हमने देख लिया कि उनका उनकी गर्भधारणा ये मनुष्य जैसे करते हैं वैसे नहीं हो गई है। भगवान स्वयं वैकुंठ धाम से वसुदेव के मन में आए, वसुदेव के मन से देवकी के मन में, और फिर एक लौकिकता का रूप दिखाने के लिए देवकी गर्भवती जैसे दिख रही है। और जैसे अष्टमी के दिन मध्यरात्रि के समय हम जिस समय जन्माष्टमी मनाते हैं, जन्म अष्टमी, ये अष्टमी की तिथि है, मध्यरात्रि 12 बजे उस समय वसुदेव देख रहे हैं कि 4 भुजा वाले 4 हाथ वाले कवच, कुंडल, किरीट, अलंकार, सुंदर केश, ऐसे बालक सामने खड़े हैं। तो उनके पता चला, उन्होंने देखा कि ये वही है जिनकी हम स्तुति करते हैं, ये वही है, भगवान है। अब यहां पर भक्तिवंत हॉस्पिटल में एक मेटर्निटी वार्ड है, रोज वहां पर कुछ नहीं कम से कम 4-5 तो होते रहेंगी डिलीवरीज, मालूम नहीं कितनी होती है अंदर से 4-5 होती है। आज तक कभी किसी डॉक्टर को किसी ने ऐसे बताया कि ये बच्चा जो जन्म लिया ये तुरंत बात करने लगा और इसके बड़े लंबे केश हैं और सुंदर कवच है, मुकुट है, गहने हैं। नॉर्मली मैंने सुना है, मैं भी ऐसे ही आया होऊंगा कि हम जो आते हैं तो हम पूरा वो माता के गर्भ का जो अलग अलग प्रकार के दुर्गंधी वाले पदार्थ हैं ये सब लेके, हमें होश तक नहीं होता कि हम है कहां पे, उल्टा पकड़ के हमको एक फैक करके मारना पड़ता है, तब अचानक हमारे फेफड़ों में हवा जाती है और हम सांस लेने लगते हैं कम से कम। ये रहा भौतिक जन्म। कौन इसका सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है? कर्म का कानून, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देह उपपत्तय, स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुरुषो रेतकणाश्रयः। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि माया द्वारा बनाया गया ये जो एजेंसी है, जैसे पुलिस एक एजेंसी है, माया द्वारा नियंत्रित कर्मणा दैव नेत्रेण, व्यक्ति के कर्म का पूरा लेखा जोखा लेकर, इसने ऐसे पाप किया था, इतना पुण्य किया है, इसको जीवन में इतना सुख मिलेगा, जितना है उतना ही मिलेगा, सिस्टम क्लियर है। आपने अगर सेकंड क्लास का टिकट निकाला है तो आपको सेकंड क्लास में ही बिठाया जाएगा। कोई कहेगा नहीं आजकल अपग्रेड करते हैं, ठीक है अपग्रेड की बात अलग है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जनरल क्लास का टिकट लेके आप सोचेंगे कि शायद मुझे 2 टियर में मिलेगा तो रहने बैठने के लिए, नहीं होगा ऐसे कभी। तो जैसे ही आपने पैसा दिया है वैसे आपको क्वालिफिकेशन में, अभी ये 10th स्टैंडर्ड के एडमिशंस है, ऐसा होगा कि 45% वाले को बहुत अच्छे कॉलेज में मिलेगा, चांसेस बहुत कम है। खैर मनुष्य समाज में ये इम्परफेक्शंस, ये गलतियां, त्रुटियां, चुतियां हो सकती है। त्रुटि डिफेक्ट्स दैव के इसमें नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की बनाई हुई शक्ति है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, लेकिन ये जो बालक वसुदेव के सामने है, वो बालक वसुदेव और देखो को कह रहा है, आप दोनों मेरे भक्त हैं, आप दोनों अनेक जन्मों से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं, आपने 1200 दिव्य वर्ष आपने तप किया और इसीलिए मैं आपके ऊपर प्रसन्न होकर मैं आपके पुत्र के रूप में आया हूं। 12,000 वर्ष वो कहते हैं कि आपका नाम था प्रिश्नी, आपका नाम था सुतपा। वसुदेव और देवकी को भगवान स्वयं, आज तक किसी बालक ने अपने माता पिता को अपनी पहचान दी है उनकी कि आप कौन है करके? उसे खुद समझ में नहीं आता 3 साल तक कि मैं कौन हूं। 1 वर्ष के बालक को पूछो तुम्हारे माँ का नाम क्या है, मम्मी, पिताजी का नाम क्या है, पप्पा, कहां रहते हो, घर में कहां है, बताओ उसको कहां जाना है, क्या करना है। वो ऐसे होता है ना कि बालकों को अगर कुंभ मेला या कहीं जगह ले जाते हैं तो माता पिता उनका लेबल, नाम, पिता का नाम, कहां रहते हैं, फोन नंबर, ये सब एक लेबल पे लगाकर यहां रखते हैं। बच्चा खो जाता है, वो रोने लगता है, देखने वाला पड़ता है कि अरे ये इधर का है। जीव इतना अज्ञानी है उसे यही पता नहीं कि मैं कौन हूं। लेकिन भगवान जब उनका आविर्भाव होता है तो ऐसे कोई उसमें डर की बात नहीं है। वसुदेव और देवकी बारी बारी से, मतलब पहले वसुदेव प्रार्थना करते हैं, उसके बाद देवकी भी उनकी प्रार्थना करती है। दोनों वैसे ही बड़े ज्ञानी हैं, तो वो भगवान की बहुत उच्च और सही प्रकार की स्तुति करते हैं, लेकिन अंदर कुछ हो रहा है उनके। क्या हो रहा है ये एक बड़ा रहस्य है। श्री कृष्ण परम पिता हैं। आप कहेंगे अरे परसों तो मैं गीता का प्रवचन सुन रहा था तो उसमें भगवान कहते हैं मैं अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मुझसे आता है, मैं परम पिता हूं। वो फिर भागवत में कहा गया है कि ये वसुदेव देखी उनके पिता हो गए, माता हो गए, क्या बात है? भगवान का भी भला कोई माता पिता हो सकता है? नहीं हो सकता। भगवान सब चीज के अंतिम स्रोत, अंतिम उगम, मूल कारण भगवान है, तो भगवान का कारण कौन हो सकता है? इसका उत्तर जो साधक रस तत्व जानता है उसके लिए रहस्य उद्घाटन हो जाता है कि भगवान वसुदेव और देवकी उन्होंने भगवान को जन्म नहीं दिया, वो भगवान के भक्त हैं वात्सल्य भाव में। वात्सल्य भाव वाला भक्त भगवान से कहता है आप मेरा पुत्र बनिए। क्यों? कई धर्मों में यह धारणा है अरे भगवान हमारे पिता हैं, मतलब क्या हम मौज उड़ाए और हमारा बाप है देने के लिए। बालक कभी पिताजी से पूछता है कि घर में सब ठीक ठाक है, चावल दाल तेल सब है, कुछ समस्या तो नहीं है, भाव इतने बढ़ रहे हैं? बोले भाव बड़े नहीं बड़े, मुझे तो चाहिए, मतलब चाहिए। तो भगवान को पिता मानना मतलब दोनों हाथों से खाली लेना, ये दो 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 मुझे दो। प्रभुपाद कहते हैं अच्छी बात है, कम से कम भगवान के पास मांग रहे। संसार में जो तथाकथित प्रगत देश हैं वहां तो भगवान को भी नहीं मानते। हम अपने बलबूते पे लेंगे तो अच्छी बात है कि भगवान को आप कम से कम एक अपना ऑर्डर सप्लायर, एक हमारे दिल्ली के भक्त हैं ब्रजेंद्र नंदन प्रभु, वो कह रहे हैं कि उनका ऑब्जर्वेशन दिल्ली में, बोलते हैं लोग बूंदी चढ़ाने आते हैं राधा कृष्ण को, और जितनी बूंदी नहीं होती उतनी ज्यादा बड़ी लिस्ट होती है कि इतना दो भगवान मुझे। बूंदी होती खाली 100 ग्राम, लेकिन जो उनको चाहिए
वो बूंदी जितनी संख्या है उससे ज्यादा तो लिस्ट है कि ये दो ये दो, ये कराओ, ये लड़की की शादी कराओ, ये लड़के को नौकरी दो, यहाँ पे घर दो, यहाँ पे गाड़ी दो, बंगला दो। इसमें अच्छी बात क्या है कि कम से कम आप मानते हैं कि भगवान दे सकते हैं। इसमें न्यून बात, इसमें गलत बात क्या है? अगर नहीं मिला तो आप कहेंगे ये क्या काम का भगवान। कई लोग तो इसमें कहते हैं कि तिरुपति गए थे तो ये मिला था, फिर रामेश्वरम गए तो ये मिला था। जैसे सोचते हैं कि ये सब अलग अलग जैसे म्युनिसिपल टैप्स हैं, हर एक के नीचे हंडा रखो, जो भर जाएगा उसको सलाम करो। भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति में कोई भावना नहीं होती कि अगर मुझे मिलेगा तो मैं कुछ दूंगा, नहीं मिलेगा तो आप अपने रास्ते पे, मैं अपने रास्ते पे। शुद्धा भक्ति वो इस भावना से होती है, मैं आपसे क्या मांगू, आप बिना मांगे सब कुछ दे रहे हो, मुझे चाहिए आपकी शुद्ध सेवा। तो दोनों पति पत्नी इस प्रकार से सेवा करते करते, स्तुति करते करते, अचानक ये वात्सल्य रस इतना ऊपर उमड़ आता है कि देवकी कहती है कि मेरी विडंबना हो जाएगी समाज में कि मैंने विष्णु को जन्म दिया करके, लोग मुझे भला बुरा कहेंगे, कंस आपको मारेगा। अरे 5 मिनट पहले आपने कहा है कि भगवान आप तो माया के अतीत हो, कोई गुण आपके ऊपर प्रभाव नहीं कर सकते, कोई आपको मार नहीं सकता, और अचानक आप ये कैसे कह रही है? ये रस तत्व का परिणाम है। भगवान खुद चाहते हैं कि अर्जुन उनको मित्र के रूप में देखे, भगवान खुद चाहते हैं कि नंद यशोदा वसुदेव देवकी उनको पुत्र के रूप में देखे, भगवान खुद चाहते हैं कि ये गोपियां उनको उनके प्रियकर के रूप में देखे। तो शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य ये रस जो तत्व है, इसमें ये सारे विरोधाभास, ये सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। जितना समय देना था उतना भगवान ने दिया, अपना चतुर्भुज नारायण रूप, फिर चतुर्भुज छोटा बालक का रूप, वो दोनों रूपों को बंद करके अब एक नन्हा सा बालक रोने लगा जोर जोर से। वसुदेव ने देखा, अचानक सब शांति हो, सारे रक्षक सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब सो रहे हैं, बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं लोहे की श्रृंखला लगी थी, बेड़ियां सब निकल गई। वसुदेव ने बालक को उठाया, बालक ने पहले से उन्हें कहा था कि मुझे लेके मथुरा से गोकुल ले जाओ। अनंत देव अपने फनों से वसुदेव और बालक की रक्षा कर रहे थे, अचानक इंद्रदेव ने भयंकर वर्षा आरंभ की, यमुना नदी में इतनी लहरें आ रही हैं, फेन ऊपर आ रहा है। जैसे ही वसुदेव अंदर गए, यमुना देवी ने भी मार्ग विस्तार कर दिया। धीरे 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 वो नंद महाराज के भवन में आ गए। वहां पर यशोदा देवी ने एक बालक को, एक संतान को जन्म दिया था, पुत्र के कन्या, उन्हें कुछ खास स्मरण नहीं हो रहा था, और विश्रांता अति श्रम के कारण वो जैसे बेहोश जैसे सो गई थी। नंद महाराज ने अपना पुत्र वहां रखा, वहां की कन्या को उठाकर वो ले आए। जैसे ही कन्या अंदर आ गई, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे आठवीं संतान ने जन्म लिया, आठवीं संतान ने जन्म लिया करके सिक्योरिटी गार्ड रक्षक सब कंस के पास गए, और कंस को था कि मेरा काल, अब मेरा काल आ गया है मेरे सामने। और जैसे उसने उस संतान को उठाया, बोला अरे ये तो लड़की है, ये आकाशवाणी वाले में झूठ बोलने लगे, मैं समझता था ये तो बालक होगा। उस समय देवकी एकदम करुण स्वर में कह रही है कि इसको क्यों मारते हो भैया, इसको बड़ी होने दो, मैं इसको बहू के रूप में आपके घर में ब्याहूंगी। एक स्त्री है, उसके मन में और क्या विचार आ सकते हैं कि इसको रहने दो। कहा नहीं, भले बालक हो या बालिका, उसने उठाकर उसका वही स्थान था, वो शिला पर पटकने वाला था कि उसके हाथ से निकल गई वो, पहली बार वो डर गया, सामने वो दश भुजा में प्रकट हो गई, बोले मूर्ख तू मुझे मारेगा। अब कंस सोचने लगा ये क्या हो रहा है, एक तो ये बालक नहीं बालिका निकली, और ये बालिका नहीं ये तो बड़ी देवी निकली, ये माया है स्वयं, पूरे भारत भर में उसके अलग अलग स्थान है। और माया ने उसको क्या जानकारी दी, जो तुमको मारने वाला है वो यहां पैदा नहीं हुआ। पहले स्टेटमेंट से ही माया गलत इंफॉर्मेशन देती है, है भी वहां पैदा हुआ था भी, वास्तविक कृष्ण जन्म लेते हैं वृंदावन में। जो वृंदावन कृष्ण है वो गोपियों के साथ विहार करते हैं, जो कृष्ण के साथ जो विष्णु का अंश है, कई लोग समझते हैं विष्णु पहले कि कृष्ण पहले, दोनों सही है। वृंदावन के बाहर असुरों का नाश ये सब विष्णु का काम है, वृंदावन के अंदर जो असुरों का नाश है उसमें भगवान कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। हमें भगवान स्पष्ट करते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। परित्राण साधुओं का, साधु साधु मतलब केवल किसी ने गेरुए कपड़े पहने या बड़े बाल रखे या सर मुंडवाया है। प्रभुपाद का एक डेफिनेशन है प्यूरिफाइड मेन हु आर थरली ऑनेस्ट, जो व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध कर रहा है और पूर्ण रूप से प्रामाणिक है। यह प्रामाणिकता किस बात पे आती है कि यह विश्व भगवान ने बनाया है और हम भगवान के अंश हैं, उनके सेवक हैं, यह सबसे प्रामाणिकता की यह नींव है। तो परित्राणाय ऐसे साधुओं का परित्राण करने के लिए विनाशाय, नाश मतलब नाश, विशिष्ट रूपेण पूर्ण रूप से ऐसे लोग जो घमंडी बनते हैं, भगवान के ही साधन लेकर भगवान की ही सिद्धियां लेकर उल्टे भगवान पर वो चलाते हैं। सिद्धांत के दृष्टिकोण से आपने सूरज के ऊपर एक जलती माचिस फेंक दी तो कुछ फर्क पड़ने वाला है, सूरज पहले ही जल रहा है, आपकी माचिस से क्या होने वाला है। आप एक एटम बॉम्ब फोड़ोगे सूरज के ऊपर तो भी क्या उसका रेडिएशन का परिणाम होने वाला है। तो वैसे ये असुर भगवान को क्या कर सकते हैं, उनकी शक्ति असुरों के पास जो पहले शक्ति है वो भी भगवान से उन्होंने छीन के लिए है। छीनने का अर्थ होता है कि तप करके ज्ञान संपादन करके। लेकिन एक असुर है जो कभी छोड़ते नहीं अपना काम, क्योंकि गुणों का परिणाम कारणम गुणों संगस्य सद सद योनि जन्मसु। कंस, कोई कहेगा कंस ऐसा क्यों था, वसुदेव ऐसे क्यों थे, क्योंकि उन्होंने अपने अपने जीवन में किए हुए चयन, अपने अपने चॉइसेस। ये विष्णु माया को देखकर और सारा उसका अतीत काल उसके सामने आ गया तो कंस एकदम भावना विवल हो गया। अरे बहन, अरे बहनोई जी, मैंने क्या किया, मैं क्या कर बैठा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। और देवकी वसुदेव ऐसे मासूम, उन्होंने क्षमा भी कर दी, बोले ठीक है, काल के प्रभाव से जो हो गया सो हो गया, अभी किसको दोष दे हम भी। और कंस अपने महल में बैठकर सोच कर रहा था कि भी क्या किया जाए कि उसके विशेष सलाहकार, उसके मंत्री जो उससे भी ज्यादा असुर थे विचार में, शक्ति में भले नहीं होंगे, अभी वो भला कैसे ये सहन कर सकते हैं कि हमारे बॉस एकदम अहिंसक हो जाएं और कल से हाथ में माला लेके जप करें तो हमारा सैलरी क्या क्या होगा। तो उन्होंने कहा महाराज आप चिंता मत करो। बोले क्या चिंता मत करो, मृत्यु मेरी होने वाली है आपकी नहीं। बोले सुनिए,
जब भी हमने देखा है आपको, देवताओं को आप ललकारते हो, ये सब देवता स्वर्ग में रहते हैं, थर थर कांपते हैं, युद्ध भूमि में आपके सामने अपना उत्तरी वस्त्र डालकर पीठ दिखाकर भागते हैं, आपको क्या डरना। और इस तरह से इतनी हवा भरने लगे वो कंस में कि कुछ ही समय में उसे सोचा, ये बात तो सही है, मैं क्यों डरूं। और फिर कंस ने अपना रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया, पुतना, अघ, बक, त्रिनावर्त, व्योम, केशी। आप कहेंगे ये किन भाषा के नाम ले रहे हैं आप? तो ये कोई सज्जन शिरोमणि तो है नहीं, ये सब एक से एक बढ़कर सिद्धि वाले, एक प्रकार से योगी। और इसमें से सबको कंस ने मार मार कर पीट पीट कर अपना मित्र बनाया था। ये कोई ऐसे फ्रेंडशिप की बात नहीं थी कि मेरा काम करोगे, नहीं मर जाओगे, नहीं तो अच्छा ठीक है करता हूं। दुष्टों की मैत्री वो कोई टिकती नहीं कभी, क्योंकि उसकी नींव डर होता है। तो अब जो मुझे मारने वाला है वो तो अभी यहां तो है ही नहीं, तो कैसे पता करूं कहां होगा। थोड़ा बड़ा होने तक रुकते हैं, तो उनके सलाहकार ने कहा कि नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं करते, देखो 4 या 5 दिन हो गए, ठीक है 4-5 दिनों में गोकुल के आसपास के प्रदेश में जितने भी सारे बालकों ने जन्म लिया है सबको मार देते हैं होलसेल। बोले उसे क्या होगा, उसमें अगर कोई होगा आपको मारने वाला तो मर जाएगा। तो उसने कहा हाँ ये बात सही है। तो देखिए जो व्यक्ति किए करतूत के ऊपर पश्चाताप कर रहा है, उस समय अगर उसको कोई अच्छी सलाह देने वाला, कोई हितोपदेश देने वाला होता और उसकी वो बात मानता, तो वो फिर से अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकता है। क्योंकि कंस ने ये चयन किया, ये उसकी चॉइस है कि मैं अपने सलाहकारों का सुनूं, तो उसने ये दूसरा चॉइस किया कि नहीं सभी बालकों को मारते हैं, कौन करेगा ये काम। बोले चिंता मत करो, एक है ऐसी व्यक्ति, वो योगिनी है, उसके पास सिद्धियां हैं। तो पूतना को बुलाया गया, उसका व्यक्तिमत्व तो कैसे था कि उसको नन्हे बालकों को मारने में आनंद आता था। वो अपने स्तनों को विष लगाती थी और बालकों को कहती थी कि माता से कहती थी कि आपका कितना सुंदर बालक है। अभी किसी भी माता का एक ये नॉर्मल मनोवैज्ञानिक भाव है कि जो भी अपनी बालक की स्तुति करेगा उसको तो ये अच्छा आदमी है, क्योंकि बालक से प्रेम है। तो वो बालक को उसको सुपुर्द करती थी, और जैसे ही ये बालक उसके स्तनों को होंठ से स्पर्श करता था, इतना भयंकर विष लगाती थी वो अपनी छाती में कि स्पर्श से ये बालक गतप्राण होता था। पूतना बाल घातिनी, और पूतना के ये वर्णन को सुनकर परीक्षित महाराज को मन में इतना क्षोभ और इतना दुख हो रहा है। और सुखदेव महाराज कहते कि महाराज जिस स्थान पर कृष्ण के नाम का कीर्तन होता है वहां पर ये दुष्ट शक्तियां कुछ नहीं कर सकती, आप चिंता मत करो। जहां पर भी उच्च स्वर में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वहां पर ये कोई शक्तियां का प्रभाव नहीं हो सकता। परीक्षित महाराज को थोड़ा अच्छा लगा, और ये पुतना अपनी योग बल पर एक इतना रूपवान उसने अपना रूप बना दिया, इतना लावण्यवती बन गई वो, इतनी कि ब्रजवासी बेचारे सिंपल लोग हैं, सादे सुदे लोग हैं, वो कहने लगे ये देखा कौन आ रही है, मुझे लगता है कि नंद बाबा के यहां जो पुत्र हो गया है वो मेरे दृष्टिकोण से नारायण से कम नहीं है। किसी ने कहा हाँ मुझे भी लगता है, अगर ये नारायण है तो ये लक्ष्मी होनी चाहिए, साक्षात लक्ष्मी आ गई,
अपने पति का दर्शन करने के लिए। आपस में ये सब बेचारे भोले भाले लोग ऐसी बात कर रहे हैं और पुतना हाथ में कमल का फूल लिए सबकी तरफ देख रही है, हंस रही है। नंद बाबा के भवन तक आ गई, अंदर आ गई, अंतपुर में आ गई, जहां पर बालक कृष्ण को रखा है वहां पर आ गई। कृष्ण ने उसको देखा, उसने कृष्ण को देखा और दो क्षणों में कृष्ण ने अपनी आंखों को ऐसे बंद कर दिया। श्लोक में पुतना का भाव है कि ये अंतकम, ये साक्षात मृत्यु है। उसको कैसे पता चला कि ये मृत्यु है करके? क्योंकि उसके मन में ये डर है ना, असुर के मन में हमेशा ये डर होता है कि कहीं ना कहीं भगवान आके मुझे मारेगा, तो उसके पहले मैं उसको मारना चाहिए। एक बार किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि असुरों को पता नहीं चलता कि भगवान कभी मरेंगे नहीं उनके काम से? बोले इसलिए तो असुर है ना वो वो हमेशा यही सोचते हैं कि बाकी लोगों ने जो प्रयास किए हैं वो थोड़े बेवकूफ थे, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। हर एक असुर यही सोचता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा जो आज तक किसी ने किया नहीं था और मैं विष्णु को मार ही दूंगा। तो पुतना को देखकर भगवान ने भी जान लिया कि अरे इसने जान लिया मैं कौन हूं। अनंतम, अनंतम और अंतकम, ये अनंत है तो ये मर नहीं सकता, अगर मर नहीं सकता तो ये अनंत है। तो पुतना थोड़ी सी मन में दुविधा में पड़ गई कि ये क्या करूं इसको लेके। मैं यहां पे रोहिणी देवी, यशोदा मैया सोच रही है कि कौन है ये, कौन है आप, कहां की हो? नॉर्मली कोई भी महिला पूछेगी तो ये मैं इसी गांव की हूं ऐसा कुछ बताया होगा उसने, कितना सुंदर बालक है आपका। ऐसे करके उसने बालक को अपनी गोद में लिया। सोच लीजिए कितना क्रिटिकल प्रसंग है ये कि साक्षात सबसे घोर कालकूट लगाकर वो अभी भगवान को अपना दूध पिलाने के बाद मारने की बात कर रही है। और भगवान ने अपनी आंख बंद क्यों कर दी? आज हमारे पास समय की पाबंदी है, लेकिन हमारे आचार्यों ने इसके बारे में 15-16 कारण दिए हैं। प्रमुख उसमें से ऐसा है कि ये आई है मेरा वध करने के लिए, रूप बनाया है उसने मेरी मां जैसा, पिलाने वाली है मुझे दूध, इच्छा रखती है विष पिलाने की। ये कितना विरोधाभास है इसमें, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा ठीक है, जो भी आप देने आई हो लाओ। तो जैसे उसने अपना दूध दे दिया, भगवान ने एक ही क्षण में दूध के साथ उसके प्राण पी लिए और जैसे प्राणांतिक वेदना कहते हैं, ये कोई जैसे गरुड़ पुराण लोग पढ़ते हैं मृत्यु के, किसी के मृत्यु के बाद। तो मैंने कहा क्यों पढ़ते हैं? एक ने कहा कि उसमें लिखा है मृत्यु के समय एक साथ 40,000 अगर बिच्छू काटेंगे पे जो वेदना होती है वो वेदना होती है। वेदना इसलिए नहीं कि ये फिजिकल काम है वेदना का, आसक्ति जो टूटती है, अरे ये सब मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है, जीव को ये पता नहीं कि इसके बाद और जन्म में सब कुछ मिलने वाला है, ऐसे ही कुछ खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर होगा 19-20 फर्क। लेकिन क्योंकि जीव अनंत है उसको हमेशा जो चीज अस्थाई है, नाशवान है, उससे हमेशा दुख होता है। और असुर का मतलब होता है उसके अपने शरीर पे कितना गर्व है। पुतना को कितना गर्व था, मैं ये सिद्धियां देखो मेरी, मैं रूप बदल सकती हूं, मैं इनको ये कर सकती हूं, मैं बच्चों को मार सकती हूं। तो इतना क्रोध कि इसने इतने बच्चों का वध किया है, ये नहीं कि मुझे मारने है इसलिए मेरा क्रोध है। अगर ऐसा होता तो भगवान और आप में और हम में और अपने भगवान में क्या अंतर है? वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्वात्, एक वेदांत सूत्र का सूत्र है,
कि विषमता और घृणा ये भगवान में कभी उत्पन्न नहीं होती। भगवान के कोई फेवरेट्स नहीं है कि ये मेरा भक्त है इसलिए अच्छा है, ये असुर है इसलिए खराब है। ना, आप अपने आप को अनुकूल या प्रतिकूल बनाते हो। जैसे कोई कहता है कि मैं जब भी आईने के सामने जाता हूं तो आईना मुझ पर बहुत गुस्सा होता है। आईना कैसे गुस्सा होगा? आप जैसा आप चेहरा बनाएंगे वैसा दिखाई देगा उसमें। आप हंसोगे तो कोई कह रहे हो हंस रहे हो। तो भगवान कभी वैर नहीं करते। नमे द्वेषोस्ति न प्रियः समोहम सर्वभूतेषु सम अहम सर्वभूतेषु। ये मुझे दूध पिलाने आई है मैं दूध पीता हूं, अरे दूध ही विष है मैं विष भी पी लेता हूं। जैसे ध्यान रखो वो माचिस कभी सूरज को ये नहीं कर सकती, जला नहीं सकती, तो वैसे ये सिद्धि क्या काम करेगी। जैसे ही भगवान ने उसके प्राण ले लिए, हा करके भयंकर शब्द कर दी, वो चिल्लाती बाहर आ गई। सब देख रहे हैं कि ये इतनी सुंदरी ये महालक्ष्मी जैसी अंदर गई और भेसुर आवाज और करके बाहर छोड़ 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 छोड़, भगवान उसकी छाती पर पकड़े हुए हैं। जैसे ही वो बाहर गई वो और उसकी सारी सिद्धियां जो थी वो नष्ट हो गई। सिद्धि नष्ट होने पे क्या दिखाई दे रहा? भयंकर स्वरूप। 12 मील तक जितने भी सारे वृक्ष थे सबके सब टूट गए। उसकी आंखें अंधकूप कुएं जैसे दिख रही थी, उसके हाथ पैर पुल ब्रिज जैसे दिख रहे थे, उसकी नाभि प्रदेश उसका नाभि प्रदेश एक सूखे हुए तालाब जैसा दिख रहा था, लाल तांबे जैसे उसके बाल, और जो हल होता है ना प्लाव जिससे खेती करते हैं वैसे उसके बड़े दांत, और ऐसे भीषण एकदम कुरूप शरीर पर बालक कृष्ण, 6 दिन का बालक है वो वैसे ही पकड़ के रखा है। तो जल्दी जल्दी में अभी वहां पर कोई पुरुष भी है ही नहीं, नंदा और उनके सारे मुख्य मुख्य मंत्री ये सब कंस को टैक्स देने के लिए मथुरा गए हुए हैं। तो चिल्ला चिल्ला कर बाकी लोगों को बुलाया गया, सब गोपियों ने पहले बालक कृष्ण को वहां से नीचे उतारा, बोले पहले उसको नीचे उतारो। बाप रे, यशोदा मैया ने उसको गले लगा के रखा, क्या कैसे बच गया ये पता नहीं चला ये ऐसी है करके। सब आपस में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इस असुर से भगवान बच गए, तो पहले भगवान नारायण का पहले धन्यवाद देते हैं। फिर एक गोपुच्छ, उसमें पता चलता है कि गाय का कितना महत्व था वैदिक संस्कृति में। गोपुच्छ पहले उनके सर पर घुमाया गया, गोमय गोमूत्र से उनको नहलाया गया, फिर गोपियों ने आचमन करके जैसे अच्छे पुरोहित करते हैं वैसे न्यास रखकर अलग अलग शरीर पर भगवान के नाम लेकर गोविंदायन मा माधवायन मा मधुसूदनायन मा पद्मनाभायन मा वासुदेवायन मा सब प्रकार के ये करके। अब कोई बताएगा मेरी रक्षा के लिए मैं भगवान के पास जाता हूं, ये भगवान की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है, ये कहां से आया भाव? वात्सल्य भाव। इस प्रकार से भागवत हमको रस तत्व में धीरे धीरे हमारी प्रगति करता है कि समझने के लिए कि क्या है करके। और नंद महाराज वसुदेव को मिले थे, वसुदेव कहा थे आप ठीक है आपका काम हम तो हो गया सरकार कचहरी में हो गया, आप जल्दी भागो जल्दी वापस जाओ। तो बोले क्यों आप? उनका आपस में परिचय था, बड़े स्नेही थे वो। बोले नहीं 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 कुछ भी करके आप पहले वापस जाओ। और जैसे ही वो आ गए और सब लोगों ने बताया नंद महाराज को ये ऐसे हो गया, बोले ये वसुदेव कोई ज्योतिषी तो नहीं है, उनको कैसे पता चला कि ये कुछ होने वाला था? चलो बला टल गई, अच्छा हो गया अच्छा हो गया। और फिर ब्रज तो एक सुंदर प्रदेश है जहां पर हरियाली है, वृक्ष हैं, फूल हैं, उद्यान हैं, और नंद महाराज कोई दुग्ध दही का व्यवसाय करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब हैं, उनके पास एक दूसरे पर फेंकने के लिए दूध दही है, बड़े श्रीमान हैं, बड़े संपत्ति वाले, और ये बीच में ये विभत्स दिखने वाला ये मृत शरीर, तो ब्रजवासियों ने ठीक है उसको काट लेते हैं उसको। तो तगड़े तगड़े जो लोग थे उन्होंने आके उसको काट के मृत शरीर है उसको जलाया। अभी मृत शरीर देखना भी हम पसंद नहीं करते, और जलाने के लिए तो उस अग्नि को इतना शुभ नहीं समझते, मंगलकारी उसका धुआं नहीं है। ये पुतना का देह जब जल रहा था, कस्तूरी अगुरु ऐसा सुगंध सर्वत्र फैल गया। परीक्षित महाराज के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह देखकर सुखदेव महाराज कहते हैं, महाराज पूतना तो बाल घातिनी है, उसने इतने बालकों का वध किया कि उसके लिए नरक की गति तो निश्चित ही है। तो उसकी गति क्या होगी, उसका एक सार समझाने के लिए, उसका एक चिन्ह बताने के लिए भगवान ने यह बताया कि मेरे होठों के स्पर्श से उसका शरीर ऐसा सुगंध दे रहा है, तो आप पता करो उसके आगे गति क्या होगी। क्यों? क्योंकि एक बार उसने मां का एक रूप लेकर मुझे दूध पिलाया। कोई बोलेगा नहीं नहीं गलत बात है, उसने दूध नहीं पिलाया, तो विष पिलाने आई थी वो। बोले मैंने उसको मां समझ लिया, बाकी दुनिया कुछ भी माने। ऐसे हैं भगवान सारग्राही। तो ब्रजवासी बहुत सचेत हो गए कि अरे ये बालक अभी 6 दिन का नहीं हो गया, इसको कौन इससे रक्षा करेगा। फिर आपस में चर्चा कर रहे हैं, भगवान नारायण ही बचा रहे हैं हमको, हाँ हमने भी पुण्य किया होगा इसलिए भगवान। एक गोपिया कह रहा कि हमको अभी और सतर्क करना चाहिए, और सतर्क करना चाहिए। इस प्रकार से ये चर्चा चल रही है उसमें, और पुतना के वध के बारे में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को धन्यवाद देकर कहते हैं कि महाराज आपने ये कथा सुनी ना, आप सुनिए, आज के बाद जो भी श्रोता श्रुणिया श्रद्धया मर्त्यो, जो भी मर्त्य मानव पुतना की वध की कथा सुनेगा, गोविंदे लभते रतिम, उन सबको गोविंद जी के चरणों में रति प्रदान होगी। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो अब हमको पता चलेगा कि ये अलग अलग लीला भगवान क्यों करते हैं, ताकि हम बैठ के उनको सुने। और हरे कथा सुनने का लाभ यही है कि भगवान गोविंद के प्रति हमारी रति बढ़ती रहे, नहीं तो भगवान के प्रति रति ऐसे नहीं मिलती। इसीलिए भगवान आकर यहां पर ये सब लीलाएं करते हैं। अगर लीलाएं करनी है तो परफेक्टली करनी चाहिए ना। तो जैसे छोटा बालक है, जो मां है आपको सब मालूम होगा कि छोटे बालक के शरीर में इतनी शक्ति नहीं होती, वो हमेशा पीठ पर ही सोया रहता है, कुछ चींटी काटेगी या कुछ रोएगा या कुछ भूख लगी है तो भी ऐसे ऐसे हाथ पैर हिलाएगा। कुछ माह बाद, एक 3-4-5 महीने की बात है, जब थोड़ा थोड़ा शरीर सुदृढ़ होने लगता है तो अचानक एक दिन वो करवट बदल लेता है, ऐसे करके अपने पेट पर आता है, उसको उत्थान कहते हैं। और वैदिक संस्कृति में उसको भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, अरे ये बच्चे ने आज पहली बार करवट ले ली है। सोच लीजिए, हम कहते हैं कि आजकल इतने सारे साधन हैं, इतने सारे गैजेट्स हैं, इतना सारा सब कुछ है, क्या किसी को पास टाइम है अपने बच्चों का ये सब मनाने के लिए। जो मेन चीज है भक्त भौतिक जीवन में आनंद देने के लिए, उसके पास टाइम ही नहीं हमारे पास। तो कृष्ण ने केवल ऐसे करोड़ बदल ली तो सबने कहा चलो उत्सव मनाते हैं। उत्सव मतलब क्या, ब्राह्मण आएंगे, मंत्रोच्चार करेंगे, नंदा बाबा सबके लिए भोजन दान, गाय वस्त्र अलंकार भूमि सब प्रचुर मात्रा में दान करेंगे। ये सब मंत्र चल रहे हैं, बड़े बड़े ऋग्वेदी सामवेदी अथर्वेद यजुर्वेद के ऋचाओं को गा रहे हैं, और यशोदा मैया ने देखा कि बालक थोड़ा थोड़ा झपकी ले रहा है, सो रहा है, तो उन्होंने कहा बालकों को क्या मजा आएगा ये सब मंत्रों में। भगवान भी ये समझाते हैं कि ये वेद मंत्र मत मारो मुझके ऊपर, मुझे आनंद आता है अपने भक्तों के साथ। वैदिक मंत्र अच्छे हैं लेकिन मेरे भक्ति के बिना मुझे कुछ आनंद नहीं देते वो। तो बच्चे को सोने की इच्छा समझकर उसको वो सुला देती है। और ये एक वैश्य का घर है वृंदावन में, ब्रजधाम में। तो एक शकट मतलब एक कार्ट, एक बैलगाड़ी, उसके नीचे बालक को रखते हैं। यहां पे सब ऋचाएं का जोर जोर से मंत्र घोष चल रहा है और दान पुण्य सब काम चल रहा है। बीच में बालकृष्ण को भूख लगी, उन्होंने देखा इधर कोई नहीं, इधर कोई नहीं है, तो वो गुस्सा हो गया। छोटा बालक रोएगा, रोने लगे, इतना शब्द हो रहा है कि वो रोना भी कोई सुन नहीं रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा अपने पैर को उठाकर वो शकट को स्पर्श किया, थराम करके सारा जो उसके ऊपर हंडियां और तरह तरह के बर्तन और कपड़े और क्या क्या रखा था सब टूट गया, वो शकट भी टूट गया। सब लोग आ गए, अभी ऐसा कुछ हो गया तो सब अपना मंत्र मतलब सब बंद हो गए। और देखा कि ये क्या है, ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज ये भी एक असुर था, उसको भूत योनि प्राप्त थी, इसलिए भूत बन के वो उस गाड़ी में जाके बैठ गया वो। और इसकी इच्छा थी कि जब भी समय मिलेगा मैं टूट पड़ूंगा बालक के ऊपर, तो बालक मर जाएगा। बालक ने पहले ही अपने स्पर्श से उसको मार दिया। तो सब गोपियां आ गई, फिर चिंता कर रही है कि ये बालक के साथ हमेशा क्यों होता है ऐसे सब। कुछ छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा हमको पता है क्या हो गया। तो क्या हो गया, ये रोने लगा, बोला फिर और जोर से रोने लगा, फिर अपने हाथ पैर ऊंचा करने लगा, फिर उसके चरण जब लगे ना तभी टूट गया। तो बड़े गोप आ गए, बोले एक आप इतने निर्बुद्ध हो कि आप ये बालकों से पूछ रहे हो क्या हो गया, ऊपर से इनका जो कहना है उसके ऊपर आप चर्चा भी कर रहे हो, अरे इनकी बातों को क्या लेना इतनी गंभीरता से। जैसे आप और हम देख रहे हैं कोई बड़ा ट्रक अगर सडनली गिर गया रास्ते पे और कोई कहेगा कि एक बालक था ना उसने ऐसा धक्का मारा तो गिर गया, वो लोग बोलेंगे क्या बेवकूफ की बात है। तो वैसे ही सब लोग कोई उसको गंभीरता से ले नहीं रहा है। और ये सब छोटे छोटे गोप बालक बोल रहे हम सच बोल रहे हैं, हमने देखा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम यहां खेल रहे थे, ऐसे ही हो गया। फिर नंद यशोदा और बाकी गोपों का एक ही निष्कर्ष, ये भगवान ने बचाया हमारे बालक को। यही है वात्सल्य भाव, वो ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि यही भगवान है करके। ये कैसे भगवान है, ये तो अपने आप को बचाने चलता रोता रहता है, ये काय का भगवान है। तो भगवान भी कभी वात्सल्य भाव में कोई क्षति ना हो, उसमें कोई डेंट ना आ जाए, ऐसा ही कार्य करते हैं। माता को मैं बालक के रूप में चाहिए, परफेक्ट बालक के रूप में मैं उसके साथ प्रतिसाद करूंगा। आपको भगवान शत्रु के रूप में चाहिए, परफेक्ट शत्रु के रूप में मिलेंगे। आपको अपने जीवन से भगवान नहीं चाहिए, कभी नहीं आएंगे वो। जैसे कहते हैं आपके नाक के सामने रखे तो आप कहेंगे कहां है पता है? नहीं मुझे नहीं बोलो। कई लोग बार लोग ये समझते नहीं कि मेरी इच्छा से कैसे होगा सब कुछ। सब कुछ आपकी इच्छा पर ही अवलंबन है। इच्छा तो करके देखो, देखो क्या होता है। तो तृणावर शक्तासुर के इस वध के बाद नंद महाराज ने देखा कि सबको अभी शांत करना चाहिए। तो ब्राह्मणों को, यही वैश्यों का उस समय का रिवाज था कि ब्राह्मण संस्कृति को कहते थे कि जो जितना मर्जी ले लो, जितना मर्जी ले लो, ले लो, ले लो। अब क्षत्रिय दान दे रहे हैं, वैश्य दान दे रहे हैं, शूद्र दान दे रहे हैं, तो आप कहेंगे ये तो ब्राह्मणों का अच्छा हो गया, ले ला इतना जितना चाहे ले लो। उनके ऊपर अंकुश क्या था? अपनी आवश्यकता से एक ग्राम भी ज्यादा लोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। तो क्या करते थे, एक ग्राम नहीं 10 किलो काम करते थे। यही कंपटीशन था कि तीन वर्ण एक वर्ण को देते जा रहे हैं और ये उसको वापस देते जा रहे हैं। आप कहेंगे इसमें क्या मजा है, ये दे रहा है वो ना बोल रहा है, तो आज मजा है सब छीनने की कोशिश कर रहे हैं कोई नहीं दे रहा है। आज तो पूरा विपरीत हो गया। तो यही वास्तविक संस्कृति है जहां पर सारे वर्ण एक दूसरे से प्रेम के साथ रहते थे। सुखदेव गोस्वामी एक वर्णन करते हैं परीक्षित महाराज को कि महाराज अब बच्चा एक साल का हुआ है और यशोदा मैया, जैसे आप में से वापस मैं कह रहा हूं कई माता पिता ने किया होगा, छोटे बालक को ऐसा लेना फिर इसको ऐसे ही हवा में छोड़ देना, उसे पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन फिर माँ या पिताजी जब पकड़ लेते हैं तो हा करके एकदम हर्ष भरित होता है वो। माता पिता के हृदय जीवन का यही आनंद है। तो इसे वो कहते हैं कि लालयंती यशोदा मैया दिन भर कृष्ण के साथ ऐसे खेलती थी, कृष्ण का आनंद, कृष्ण भी सोया है, कृष्ण भी खा रहा है, जाग रहा है। और कंस ने और एक असुर, उसका था ना रिक्रूटमेंट, सब शत्रु का किया हुआ, उसमें पुतना मर गई, शक्टासुर मर गया, तो चलो ठीक है। कंस भी इतना पेशेंस दिखा रहा था कि जो भी जितना भी मरे एक और किसी को रेडी रखता ही था वो। ये तृणावर्त क्या उसके पास सिद्धि थी, वो एक बवंडर, एक साइक्लोन, एक तूफान के रूप में आ सकता था वो, ये मामूली सिद्धि नहीं है, अपार कष्ट अनेक वर्षों की साधना के बाद मिलती है, इसका उपयोग खाली गलत कर रहे हैं लोग। अब तृणावर्त भगवान को उठाने की कोशिश कर रहा है तो नेचुरली अगर यशोदा माई के हाथ से उठा ले जाएगा तो मां तो बेहोश हो जाएगी उधर। तो मां अपने बच्चे को देख रही है, बालक को, अचानक उससे लगा कि इतना वजनदार कैसे हो गया, तो उठाकर उन्होंने बाजू में रख दिया। बोले पता नहीं अभी अभी इतना हल्का था, इतना भारी कैसे हो गया। और यही मौका तृणावर देख रहा था और यही मौका भगवान भी देख रहे थे। तृणावर्त को यह पता नहीं है कि कृष्ण को पता हो गया है कि उनको क्या करना चाहिए। वो तो तृणावर्त आ गया और जैसे ही वो आ गया उसने अपने तूफान का सब चमत्कार दिखाया, छोटे छोटे तिनके, घास फूस, पत्ते और धूल इतनी भर गई सारे नंद महल के आसपास, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा पूरा आवाज होके होके एकदम बड़ा शब्द होके, और जैसे ही वो हवा शांत हो गई, धूल वूल सब नीचे बैठने लगी, एक बात सबको समझ में आ गई, ये जो भी कुछ था बालक को लेके चला गया। एक गाय जैसे अपने बछड़े के लिए क्रंदन करती है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, वैसे यशोदा माई रोने लगी, चिल्लाने लगी, छाती पीट पीट कर वो गिरने लगी। और यहां पर अभी अभी जो इतने भारी बन गए थे कृष्ण, अचानक एकदम हल्के हो गए। क्यों? क्योंकि तृणावर्त उनको उठा के जरा चाहिए ना। तो तृणावर्त ने अपना उठा लिया और कहने लगा ये काम तो आसान हो गया, उसको क्या काम दिया था, उठा के एकदम ऊपर ले जाओ और एक हाइट के बाद फेंक दो उस बालक को। तो वो ऊपर ले जा रहा है एकदम रॉकेट की तरह। आचार्य कहते हैं कि भगवान ने अभी तक ब्रजभूमि की भूमि पर आनंद लिया था लेकिन हवा कभी सैर नहीं की थी उन्होंने ऊपर, तो ये फ्री में मिल रहा है, बेचारा मेहनत से ले जा रहा है उनको। तो वो भी ऊपर गए और एक समय बाद भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। तत्पर में प्रभुपाद कहते हैं ये कंपटीशन हो रही है योगी में और महायोगेश्वरो हरि। एक योगी है और एक योगियों का ईश्वर है। उस माचिस और सूरज को हमेशा ध्यान में रखना। तो ये अपनी योग सिद्धि बता रहा है और भगवान इतने भारी बन गए, अब
तृणावर सोच रहा है ये गिर भी नहीं रहा है और मुझे उठाया भी नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है। उसने छोड़ दिया उनको और भगवान ने गला पकड़ लिया उसका। एक मामूली बालक जैसे अगर कुछ नहीं तो पकड़ लेता है,
और गला केवल पकड़ा नहीं, उसी को उधरी बंद करके वही उधरी मर गया वो। और जैसे ही उसके प्राण निकल गए, धड़ाम करके वो धराशायी हो गया। फिर सब लोग देखने लगे, कुछ ने कहा कि मैं देखा इतने ऊपर से गिरा लेकिन कुछ हुआ नहीं। सारे ब्रजवासी फिर से नारायण की स्तुति करने लगे कि कितनी भगवान की कृपा है। बीच में और बहुत सारी लीलाएं होती है, लेकिन आज हमारा विषय रहेगा मृद भक्षण के। बालक खेलते खेलते समय इतने बड़े बन गए कृष्ण और बलराम के धर्ष से, धैर्य से वो किसी के घर में जाकर कोई दूध की अंडी, दूध के मटके को फोड़ो, दही के मटके को फोड़ो, माखन चुरा के खाओ, और सारी गोपियां फिर उनको उलाना देती हुई यशोदा माई के पास आती थी, संभालो अपने बालक को। तो कहती क्या बात कर रही है, हमारे घर में कोई दूध दही कमी नहीं है। बोले नहीं, ये चोर ही है। बोले क्या बात कर रही है, यूं चोरी करेगा, थोड़ी चोरी की। बोला नहीं। ये रोज की बात होने लगी, और इतना अभी ये माखन खाने का कंप्लेंट, इतनी कंप्लेंट्स आने लगी कि एक दिन बच्चों ने कहा, मैया आज कृष्ण ने माटी खाई है। तो मां को लगा कि ये क्या है, दूध दही माखन थोड़ा एक्स्ट्रा खाएगा तो भी शरीर को तो अच्छा ही है वो, ये माटी भर की खाना ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है। बोली क्या, क्यों किया ऐसे। बोले नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बोले बलराम भी कह रहा है। बोले वो खेलने में आज वो हार गया, वो हमेशा दो पक्ष होते थे तो बोले उनकी पार्टी का पराभव हो गया तो वो गुस्सा है मेरे पे। तो बोले सब झूठ बोल रहे। बोले सब के सब झूठ बोल रहे। बोले ऐसे कैसे हो सकता है। बोले मैं सच बोलता हूं, ये भी जैसे छोटा बालक अगर कुछ करेगा भी और मां कहती है सच बोल, अभी वो झूठ बोल रहा है सीधा सीधा, फिर भी ये वात्सल्य रस को उत्तेजित करने वाला है। तो सुखदेव गोस्वामी इसके बारे में कहते हैं, ताड़न भयान मिथ्योक्तिर वात्सल्य रस पोषिता। ये क्या है, ताड़न भयान, मां के मार के भय से झूठ बोलना, ये वात्सल्य रस को पोषण देने वाला है। लेकिन इस बार अभी तो बड़ा हो गया ना, वो एक मां का हृदय ऐसा है कि ये ऐसे ही होता रहेगा, कल लोग मुझे दोष देंगे कि आपने बालक को कुछ संस्कार नहीं दिए। तो वो भगवान को ले गई बालक कृष्ण को। बोले मुंह खोल। बोले नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, कुछ नहीं, मैंने नहीं खाया। अगर माटी बालक जो भी खाता है उसको ये भी नहीं कि पूरा साफ साफ करके रख देगा, वो थोड़ा कुछ है तो रखता दिखता है वो। तो यही मां यशोदा की यही भावना थी कि कुछ है वो दिखाई देगा। मुंह खोल। मुंह खोल दिया। अरे बाप रे, क्या हो गया। उस समय मां यशोदा को ऐसा लगा जैसे इस मुख के अंदर मैंने खुद प्रवेश किया हो, वहां मुझे ये भूमि अग्नि वायु आकाश तीन गुण मह तत्व काल पूरी जैसी पागल हो गई कि ये मैं क्या देख रही हूं। और भगवान ने अपना मुंह ऐसे ही खोल के रखा है। यहां जो पीडियाट्रिशियन है वो देखेंगे, छोटे बालक के मुंह को खोलेंगे तो क्या दिखता है। भगवान के मुख में तो सारा ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। अचानक यशोदा मैया के भाव बदलने लगे। क्या मैं ब्रह्म में हूं, क्या मैं इस गलत फहमी में हूं कि मैं नंद महाराज की पत्नी हूं, मैं यहां की रानी हूं, मैं कौन हूं, मैं सपना तो नहीं देख रही, क्योंकि अभी अभी मैं कुछ काम करके आई हूं और ये देवों की माया है, तो मैं कौन इतनी बड़ी हूं कि देवता अपनी माया मुझ पर लगाएं, मैं तो एक सीधी सादी ब्रज में रहने वाली एक महिला हूं। अब कई लोगों ने भगवान के ब्रह्मांड दर्शन करके, जैसे अर्जुन ने दर्शन किया तो वो भी भ्रमित हो गया, लेकिन यशोदा मैया का जो ऊंचा जो रस है उसमें ये जो भगवान का ऐश्वर्य, श्रील प्रभुपाद ने बड़े सुंदर तात्पर्य लिखे इसमें, इसी से हमारा आज के कथा का अंत होगा यहां पर। ऐश्वर्य पूर्ण और ऐश्वर्य शिथिल, ये दो मुख्य बातें हैं। ऐश्वर्य पूर्ण भक्ति में, हे भगवान आप कितने महान हैं, आप कितने महान हैं, जैसे तिरुपति बालाजी जाओ, श्रीरंगम जाओ, आपको भगवान का ठीक से दर्शन भी नहीं मिलता, वो पुजारी ऐसे कुछ अगरबत्ती अपना कर्पूर दिया लगाकर हे करके हो गया, बस हो गया। तो ये जो भाव है अति सुंदर है कि जितना भी मिला हम तो कंकर हैं, हम तो दास हैं, जितना भगवान ने दर्शन दिया बहुत हो गया, 20-25 फुट से दर्शन किए, प्रणाम किए, चले गए। ये रहा ऐश्वर्य पूर्ण, वैकुंठ में ये भाव प्रधान है। और ऐश्वर्य शिथिल, ये नहीं कह रहे ये क्या भगवान है, ऐसी बात नहीं होती, इसमें अलग प्रकार से भक्ति, और खास करके ब्रज भक्ति। गोपियां प्रमुख, जिसमें नंद बाबा, यशोदा माई और माधुर्य भाव में राधा रानी प्रमुख जो गोपियां, ये जो भाव है वो पूर्ण ऐश्वर्य शिथिल, स्लैक। ऐश्वर्य पूर्ण मतलब वेरी रिजिड। ये दो भेद भागवत में खास करके बताए जाते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इस्कॉन जिसमें आता है, हम चैतन्य महाप्रभु का आदर्श और रूप रघुनाथ के सिद्धांतों के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। हमारे आचार्य वर्ग, हमारा गुरुवर्ग हमारे लिए ऐश्वर्य शिथिल भक्ति देते हैं। ऐश्वर्यपूर्ण भक्ति में कोई दोष नहीं है उसमें। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, पांच लोग हैं, पांचों को मिठाई अच्छी लगती है, लेकिन उसमें से दो लोगों को दूध की मिठाई अच्छी लगती है, बाकी तीन को बेसन की या जलेबी ऐसी मिठाई अच्छी लगती है। अपनी अपनी टेस्ट, अपने अपनी रुचि की बात है ये। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य स्वीकार कर ये जो ऐश्वर्य शिथिल प्रेम है ये ज्यादा मधुर है, ये ज्यादा रसपूर्ण है। और ये हमको श्रील प्रभुपाद ने उनके भागवत के तात्पर्य में से दिया है। तो आज की कथा हम यहां पर समाप्त करते हैं। कल अलग पांच प्रसंगों से हम फिर एक बार दशम स्कंध के ऊपर चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, निताई गौर प्रेमानंदे, धन्यवाद।